आगे सबक देखिए भाई। वइन काला अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन तुल्लिकत सिंतैनि, वइन काला अंति तालिकुन सलासन इल्ला सिंतैनि तुल्लिकत वाहिदतन वल असलु अन्न लिस्तिस्ना अतकल्लुमुम बिल हासिली बादत सुनिया हुवा सहीह व मानाहु अन्नहु तकल्लुमुम बिल मुस्तस्ना मिन्हु। गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि अगर खावंद अपनी बीवी को तलाकें दे और फिर वो औरत बाद में किसी और शख्स से निकाह कर ले और फिर वो दूसरा खावंद भी इसको छोड़ दे या उसका इंतकाल हो जाए और इसने फिर पहले खावंद से निकाह कर लिया तो दरमियान में दूसरा खावंद आया, तो शेखैन रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि ये दूसरा खावंद पहले खावंद की तमाम तलाकों को गिरा देगा और अब जब दोबारा ये पहले खावंद के पास आई है तो ये फिर तीन तलाकों का मालिक हो गया, चाहे इसने पहले एक तलाक दी थी, चाहे दो दी थी और चाहे तीन दी थी, तो दूसरा खावंद उन सब को गिरा देगा और ये पहला खावंद दोबारा तीन तलाकों का मालिक बन जाएगा। जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि अगर पहले खावंद ने तीन तलाकें दी थीं तो दूसरा खावंद जो है वो इन तीन को तो गिरा देगा और पहला जब निकाह करेगा तो वो दोबारा तीन तलाकों का मालिक होगा, लेकिन अगर पहले खावंद ने एक या दो तलाकें दी थीं तो दूसरा खावंद उन एक या दो तलाकों को नहीं गिराएगा, लिहाजा जब ये फिर पहले खावंद के पास आएगी तो वो सिर्फ बाकी तलाकों का मालिक होगा। अगर उसने पहले एक दी थी तो अब ये सिर्फ दो तलाकों का मालिक है तमाम जिंदगी, और अगर पहले इसने दो दी थी तो अब ये सिर्फ एक तलाक का मालिक है तमाम जिंदगी। और फिर बतलाया कि सूरत मसला ये, एक शख्स ने अपनी बीवी की तीनों तलाकों को मुअल्लक कर दिया, इन दखलती दारा फअंति तालिकुन सलासन, कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तीन तलाकें हैं और फिर उसके बाद वो तीन तलाकें मुअल्लक थीं और इधर खामन ने उसको मसलन दो तलाकें दे दी और फिर ये औरत बाइना हुई, इसने किसी और से निकाह कर लिया और फिर दोबारा पहले खावंद के पास आई तो अभी भी तालीक मौजूद है, अभी भी तालीक मौजूद है, लिहाजा ये औरत उस घर में जाएगी तो शेखैन के नजदीक खावंद दोबारा तीन तलाकों का मालिक बना था तो वो तीनों वाके हो जाएंगी, क्योंकि इसने तालीक भी क्या की थी कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तीन तलाकें हैं, तो तीनों वाके हो जाएंगी। जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम जुफर रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि अब पहला खावंद सिर्फ बाकी तलाकों का मालिक है और पहले दो दी थी तो अब एक का मालिक है और ये औरत जब उस घर के अंदर जाएगी तो ये एक तलाक भी वाके हो जाएगी, यानी तीनों पूरी हो गई। तालीक भी कितने की थी? तीन की, और तीन में से तो दो ये पहले ही दे चुका था, एक अब रह गई थी तो ये एक तलाक वाके हो जाएगी। और इसके मुकाबले में अगर एक शख्स ने इसी तरह तालीक की कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तीन तलाकें हैं और फिर खावंद ने तीनों तलाकें दे दी बाद में, वो तीन वो तो उसी तरह मुअल्लक हैं, ये तीन उसने मुनज्जस तलाकें दे दी और फिर इस औरत ने किसी और शख्स से निकाह किया और फिर उसका इंतकाल हुआ, ये फिर पहले खावंद के पास आ गई, तो इस सूरत के अंदर अब अगर औरत उस घर में जाएगी तो हमारे नजदीक तलाकें वाकई नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि खावंद ने जो तलाकें मुअल्लक की थी वो गुज़श्ता मिल्कियत की तलाकें थी भाई, और ये तो नई मिल्कियत है, लिहाजा यहां तलाक वाकई नहीं होगी। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि खावंद ने मुतलक तीन तलाकों को मुअल्लक किया था, लिहाजा अब भी ये औरत उस घर में जाएगी तो तलाकें वाकई हो जाएंगी। और उसके बाद फिर साहिब हिदाया ने फसल फिल इस्तिस्ना जिक्र फरमाई, भाई मैंने आपको बतलाया कि ये जो इस्तिस्ना है या इसी तरह जो तालीक है ये बयान तगयीर हैं, जब खावंद अंति तालिकुन कहता है तो फौरन तलाक वाके हो जाती है, लेकिन अगर इसी के साथ आगे वो तालीक कर दे अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तो देखो इन दखलती दार ने माकबल के सारे कलाम को बदल दिया, अब वो तलाक वाके नहीं हो रही बल्कि मुअल्लक हो गई है, जब उस घर में जाएगी तब वाके होगी। तो ये जो तालीक है ये बयान तगयीर है भाई, तालीक ये बयान तगयीर है। और इसी तरह इस्तिस्ना ये भी बयान तगयीर है। मसलन मैं कहता हूं जा अनिल कौमू, मेरे पास वो लोग आए थे, और इससे मुराद पांच अफराद हैं और उनमें से एक जैद भी है। तो जब मैंने कहा जा अनिल कौमू, वो लोग मेरे पास आए थे, तो इसका मतलब यह है कि जैद भी आया था। लेकिन अगर मैं इस्तिस्ना ले आऊं जा अनिल कौमू इल्ला जैदन, वो लोग मेरे पास आए थे सिवाय जैद के, तो अब मालूम हुआ जैद माकबल के हुक्म में दाखिल नहीं। तो देखो इस इस्तिस्ना ने भी माकबल कलाम को बदल दिया। सिर्फ जा अनिल कौम होता तो माना था वो पांचों अफराद आए हैं, लेकिन इल्ला जैदन ने क्या किया, उसको बदल दिया कि बतला दिया कि अल कौम से मुराद यहां वो पांचों अफराद नहीं है बल्कि जैद के अलावा बाकी चार अफराद मुराद हैं। तो लिहाजा इस्तिस्ना भी बयान तगयीर है। अलबत्ता फर्क यह है कि तालीक जो है वो माकबल के कुल को बदल देती है और इस्तिस्ना माकबल के जुज को बदलता है, सारे को नहीं बदलता भाई। और फिर मैंने आपको बतलाया कि इस्तिस्ना दो किस्म पर है, एक इस्तिस्नाए इस्तिलाही और एक इस्तिस्नाए उर्फी। इस्तिस्नाए इस्तिलाही यह है कि इल्ला और उसके अखवात के जरिए किसी फर्द को माकबल अफराद के हुक्म से निकाल दिया जाए, जैसे जा अनिल कौमु इल्ला जैदन, अल कौम की तरफ मजीअत के हुक्म की निस्बत की गई थी कि ये लोग आए हैं, लेकिन जैद को उसमें से निकाल लिया गया कि आने की निस्बत जैद की तरफ नहीं है, वो नहीं आया है बाकी आए हैं। तो इसको इस्तिस्नाए इस्तिलाही कहते हैं जो आप इल्म नह में पढ़ चुके हैं, जबकि दूसरा इस्तिस्नाए उर्फी है। मैंने अब बतलाया था कि उर्फ जो है वो आम लोगों की आदत को कहते हैं, यानी आम अरब लोग जो हैं उनकी आदत में इस्तिस्ना इंशा अल्लाह को कहते हैं। कलाम में क्या कह देना, इंशा अल्लाह कहना, इसको वो इस्तिस्ना कहते हैं। तो ये इस्तिस्नाए उर्फी है भाई। तो यहां पर चंद मसाइल इस्तिस्नाए उर्फी के बयान फरमाए साहिब हिदाया ने, और अब आगे वो इस्तिस्नाए इस्तिलाही को भी बयान फरमाएंगे। इस्तिस्नाए उर्फी की मिसाल, मसलन एक शख्स अपनी बीवी से कहता है अंत तालिकुन इंशा अल्लाह ताला, तो उलमा और फुकहा फरमाते हैं कि ये तलाक लगव चली गई, ये वाकई नहीं होगी। वजह यह कि खावन ने तलाक को मुअल्लक कर दिया है अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह की चाहत के साथ, और अल्लाह की मशीयत का तो पता नहीं चल सकता, और जब शर्त का पता न चल सके तो जजा भी वाकई नहीं होती भाई। जजा तो तभी वाकई होगी जब शर्त का यकीनी तौर पर इलम हो सके भाई। तो लिहाजा ये इंशाअल्लाह ने उस तलाक को लगव कर दिया। और हां, लेकिन इस इंशाअल्लाह का माकबल कलाम के साथ मिला हुआ होना जरूरी है। दरमियान में खावन सुकूत न करे, खामोशी इख्तियार न करे। अगर वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, मसलन अंत तालिकुन कहा फिर खामोश हुआ, फिर चंद लम्हों बाद कहता है इंशाअल्लाह ताला, तो नहीं, अब ये इंशाअल्लाह उस तलाक को लगव नहीं कर सकता। वजह यह कि जब उसने अंत तालिकुन कहा और खामोश हो गया तो फौरन तलाक वाके हो गई, और अब चंद लम्हों के बाद वो दोबारा इंशाअल्लाह कहकर उस तलाक से रुजू करना चाहता है, और हालांकि जब तलाक एक दफा वाकई हो जाए तो उसमें रुजू नहीं हो सकता, लिहाजा इसका एतबार नहीं। लिहाजा सुकूत के बाद इंशाअल्लाह कहा जाए तो ये माकबल वाले कलाम को बातिल नहीं करेगा भाई। बात समझ में आ गई जी। अब आइए आज के सबक पर भाई। وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا إِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ سِنْتَيْنِ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ سَلَاسًا إِلَّا سِنْتَيْنِ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً। भाई अब सूरत यह है कि खावन बीवी को तलाक देता है और साथ इस्तिस्ना को जिक्र करता है, और इस्तिस्ना तो बयान तगयीर है जो माकबल को बदल देता है। मसलन खावन बीवी से कहता है अंत तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, तो देखो तीन तलाकों में से एक का इस्तिस्ना कर दिया, जब एक का इस्तिस्ना किया तो बाकी कितनी तलाकें बच गईं, दो तलाकें, तो दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। और अगर खावन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन सलासन इल्ला सिंतैनी, अब दो का इस्तिस्ना कर दिया, तो जब दो का इस्तेसना कर दिया जाए तीन से तो बाकी एक तलाक बचती है, लिहाजा एक तलाक वाके हो जाएगी, एक तलाक वाके हो जाएगी भाई। तो कहते हैं वह इन काला, और अगर खामन ने कहा अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, देखो ये इस्तेसनाए इस्तेलाही आ गया भाई, इल्ला और उसके अखवात के जरिए बाजे अफराद को माकबल के हुक्म से निकाल लेना, इसको क्या कहते हैं इस्तेसना भाई। तो कहते हैं वह इन काला अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, और अगर खामन ने बीवी से कहा तुझे तीन तलाके हैं इल्ला वाहिदतन मगर एक, यानी एक का इस्तेसना कर लिया, तो तुल्लिकत सिंतैनी, तो उस औरत को दो तलाकें हो जाएंगी। वह इन काला अंति तालिकुन सलासन इल्ला सिंतैनी, और अगर कहा तुझे तीन तलाकें हैं मगर दो, यानी दो का इस्तेसना कर लिया, तो तुल्लिकत वाहिदतन, तो उस औरत को एक तलाक हो जाएगी। वल असल, और असल यह है, अब जाबते जिक्र फरमाएंगे साहिब हिदाया, आगे तीन जाबते जिक्र फरमाएंगे और उन तीन जाबतों को जब आप मिलाएंगे तो उससे पता चल जाएगा कि पहली सूरत में दो तलाकें हुई हैं और दूसरी सूरत में एक तलाक हुई है। ये जो दो सूरतें जिक्र कर दी मतन के अंदर, पहली सूरत क्या थी अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, एक का इस्तेसना किया, और दूसरी सूरत क्या थी अंति तालिकुन सलासन इल्ला सिंतैनी, दो का इस्तेसना किया। तो इनके बारे में जाबते बतलाएंगे। देखिए भाई कहते हैं वल असलू, और असल यह है यानी जाबता यह है कि अनल इस्तेसना अतकल्लुम बिल हासिली बाद सुनिया, कि इस्तेसना जो है वो तकल्लुम बिल हासिल है बाद सुनिया, अई बाद अल इस्तेसना, सुनिया क्या क्या माना इस्तेसना भाई। तो इस्तेसना जो है वो तकल्लुम बिल हासिल का नाम है बाद सुनिया, इस्तेसना के बाद, यानी इस्तेसना के बाद जो बाकी बच जाए उस पर तकल्लुम का नाम है जी। उस पर तकल्लुम का नाम है। मसलन एक शख्स किसी से कहता है लिफुलानिन अलैया आशरतुन इल्ला तिसातन, फुला के मुझ पर दस दिरहम है इल्ला तिसातन मगर नौ, तो दस में से नौ का इस्तेसना किया, मालूम हुआ एक दिरहम है इस शख्स पर जी। ये क्या है इस शख्स पर क्या है एक दिरहम है। तो इस शख्स का यह कलाम देखो तवज्जो से सुनो, लिफुलानिन अलैया आशरतुन इल्ला तिसातन, यूं कह दे तब भी उस शख्स पर एक दिरहम है, और अगर सीधा यूं कह दे लिफुलानिन अलैया दिरहमुन, फुला का मुझ पर एक दिरहम है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों में एक में आशरा से तिसा का इस्तेसना कर रहा है, और उस सूरत में भी बाकी क्या बचता है एक, और एक सीधा एक ही को जिक्र कर देता है लिफुलानिन अलैया दिरहमुन, तो दोनों कलामों में कोई फर्क नहीं है। मालूम हुआ इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है, इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का, यानी मुस्तस्ना मिनहू में से मुस्तस्ना को निकाल दिया जाए, जो इल्ला से पहले आए वो क्या है मुस्तस्ना मिनहू, जो इल्ला के बाद आए वो क्या है मुस्तस्ना, तो मुस्तस्ना मिनहू में से मुस्तस्ना को निकाल दिया जाए तो जो बाकी बचता है गोया मुतकल्लिम उस पर कलाम कर रहा है, और दस में से नौ निकाल दें तो कितने बच गए एक, तो गोया मुतकल्लिम यूं कह रहा है लिफुलानिन अलैया दिरहमुन, कहा तो उसने यह है लिफुलानिन अलैया आशरतुन इल्ला तिसातन, मगर यूं ही समझें उसने क्या कहा है लिफुलानिन अलैया दिरहमुन, क्योंकि इस्तिस्ना किस चीज का नाम है तकल्लुम बिल बाकी का नाम है। बात समझ में आ गई। तो पहला जाबता यह, तो कहते हैं वल असलू, और असल यह है जाबता यह है कि अनल इस्तिस्ना अतकल्लुम बिल हासिली बाद सुनिया, कि इस्तिस्ना जो है वो तकल्लुम बिल बाकी है इस्तिस्ना के बाद, हुआ सही, यही कौल सही है, यही कौल सही है। ये दरअसल रद्द कर रहे हैं बाज उलमा के कौल को साहिब हिदाया। बाज उलमा फरमाते हैं कि इस्तिस्ना जो है अगर इस बात से इस्तिस्ना किया जाए तो यह नफी है, किससे इस बात से इस्तिस्ना किया जाए तो यह नफी है, और नफी से इस्तिस्ना किया जाए तो यह इस बात है। मसलन देखो मैं आपसे कहता हूं जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास आए थे, मसलन पांच अफराद की एक जमात है और उनमें जैद भी शामिल है, वो लोग मेरे पास आए थे। अब देखो यहां पर नफी नहीं है, आने का जिक्र है, आने की नफी नहीं है यहां पर, तवज्जो है। तो जा अनिल कौम में इस बात है, उन लोगों के आने का इस बात है, इससे मैं इस्तिस्ना करता हूं। जा अनिल कौम इल्ला जैदन, मेरे पास वो लोग आए मगर जैद, मालूम हुआ मा कबल में इस बात है, तो ये इस्तिस्ना जो आया इल्ला, इसके जरिए क्या कर रहा हूं मैं, मा बाद की नफी कर रहा हूं। मालूम हुआ जैद नहीं आया है भाई, बाकी सारे आए लेकिन जैद नहीं आया, तो इस बात के बाद इस्तिस्ना किस लिए आता है, नफी के लिए। और अगर माकबल में नफी है तो इल्ला के मा बाद इस बात होगा। मसलन मैं कहता हूं मा जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास नहीं आए थे, इसे पता चला कि मालूम हुआ जैद भी नहीं आया होगा क्योंकि जैद भी उन्हीं में से एक है, लेकिन आगे मैं फौरन कहता हूं इल्ला जैदन, सिवाय जैद के, तो मा जा अनिल कौम, वो लोग मेरे पास नहीं आए, इल्ला जैदन सिवाय जैद के। तो देखो माकबल में नफी है और इल्ला के बाद जैद का इस बात है, मालूम हुआ जैद आया है और बाकी नहीं आए। तो बाज उलमा फरमाते हैं कि इस्तिस्ना इस बात से किया जाए तो वो नफी है, और नफी से इस्तिस्ना किया जाए तो वो इस बात है, लेकिन साहिब हिदाया ने उनके कौल को रद्द कर दिया कि नहीं, इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है, इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है, यानी माकबल में से मुस्तस्ना को निकाल दें तो जो बाकी बच गए उस पर गोया मुतकल्लिम तकल्लुम कर रहा है। जैसे एक शख्स ने क्या कहा, लिफुलानी नालई आशरतुन इल्ला तिसअतन, तो दस में से नौ का इस्तिस्ना करने कितना बचा, एक, तो गोया कहने वाले ने यूं ही कहा है लिफुलानी नालई दिरहम उन, भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं हुआ सहीह, यही सहीह है कि इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है, व माना हु, और माना इसका यह है कि अन्नहु तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहु, कि यह तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहु है, तकल्लुम बिल मुस्त, भाई देखो इल्ला से जो पहले आए वो है मुस्तस्ना मिनहु, और इल्ला के बाद जो आए वो है मुस्तस्ना, और इस्तिस्ना किस चीज का नाम है, अभी आपको बताया कि मुस्तस्ना मिनहू में से मुस्तस्ना को निकाल दें जो बाकी बचे, इस्तिस्ना उस पर तकल्लुम का नाम है। तवज्जो है, इस्तिस्ना जो है वो मुस्तस्ना मिनहू पर तकल्लुम नहीं है, मुस्तस्ना मिनहू से जो बाकी बचे उस पर तकल्लुम है। जैसे वो शख्स क्या कहता है, लिफुलानिन अलैया आशारातुन इल्ला तिसअतन, तो मुस्तस्ना मिनहू क्या है, आशारा आशारा, और इसमें से इस्तिस्ना किसका किया, तिसा यानी नौ का, तो बाकी क्या बचा, एक, तो गोया एक पर उसने तकल्लुम किया है। लेकिन साहिब हिदायत फरमा रहे हैं अन्नहु तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहू, कि इस्तिस्ना जो है यह मुस्तस्ना मिनहू पर तकल्लुम का नाम है, किस पर, हां इस्तिस्ना मुस्तस्ना मिनहू पर तकल्लुम का नाम है, कि गोया कहने वाले ने मुस्तस्ना मिनहू को जिक्र किया है, हालांकि मुस्तस्ना मिनहू तो यहां आशारा था, और हालांकि उस शख्स पर कितना वाजिब है इस सूरत में, जब उसने कहा लिफुलान इन अलैय आशरतुन लिल्लाते सातान, तो कितने वाजिब हुए, एक दिरहम वाजिब हुआ, क्योंकि दस में से नौ का इस्तिस्ना करें तो एक बचता है। तो इस्तिस्ना किस चीज का नाम है, तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहू का नाम है, या वो जो बाकी मिनल मुस्तस्ना मिनहू है उसका नाम है, बाकी जो बाकी मिनल मुस्तस्ना मिनहू है। तो लिहाजा यहां जो साहिब हिदाया फरमा रहे अन्नहु तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहू, कि इस्तिस्ना जो है वो तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहू का नाम है, मुराद इससे वही है जो वो पीछे बयान कर चुके, कि ये इस्तिस्ना जो है ये तकल्लुम बिल बाकी मिनल मुस्तस्ना मिनहू, तकल्लुम है वो जो बाकी है मुस्तस्ना मिनहू से उसका नाम है। बात समझ में आ गई, तो साहिब हिदाया इबारत मुख्तसर लाए, मुराद उनकी वही है कि मुस्तस्ना मिनहू में से जो बाकी है उस पर तकल्लुम का नाम है। तो कहते हैं वह माना हो, और माना इसका यह है कि अन्नहु तकल्लुम बिल मुस्तस्ना मिनहू, कि इस्तिस्ना जो है ये तकल्लुम है वो जो बाकी है मुस्तस्ना मिनहू में से उस पर तकल्लुम का नाम है। इज़ला फ़र्क़ बैन क़ौलिल क़ाइल लिफ़ुलान इन अलैय दिरहमुन, इसलिए क्योंकि किसी कहने वाले के इस कौल में लिफ़ुलान इन अलैय दिरहमुन, फुलां का मुझ पर एक दिरहम है, व बैन क़ौलिही अशरतुन इल्ला तिसअतन, और उसके ये कहने में कि फुलां के मुझ पर दस दिरहम है इल्ला तिसअतन सिवाय नौ के, इन दोनों कौलों में कोई फर्क नहीं है। लिफुलानी नालैया दिरहमुन कह दे या लिफुलानी नालैया आशरतुन इल्ला तिसअतन कह दे, दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों सूरतों में मुतकल्लिम पर एक दिरहम वाजिब होगा, वो एक दिरहम का इकरार कर रहा है। तो कहते हैं इजला फर्क बैन कौल القائل فلان علي درهم وبين قوله عشرة الا تسعة, क्योंकि कोई फर्क नहीं है किसी कहने वाले के इस कौल में लिफुलान इन अलैय दिरहम और उसके कौल लिफुलान इन अलैय आशरतुन इल्ला तिसअतन के दरमियान. फयसिहु इस्तिस्ना उलबाजी मिनल जुमलति, तो लिहाजा सही है बाज का इस्तिस्ना करना मिनल जुमलति मजमुए में से. यह दूसरा जाब्ता आ गया. पहला जाब्ता क्या कि इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है. इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी मिनल मुस्तस्ना मिनहू, मुस्तस्ना मिनहू में से जो बाकी बच जाए उस पर तकल्लुम का नाम है. अब दूसरा ज़ाब्ता जिक्र फरमा रहे हैं कि लिहाजा कुल का कुल से इस्तिस्ना सही नहीं, क्योंकि कुल का जब कुल से इस्तिस्ना हो जाएगा, माकबल में भी आशरा जिक्र, इस्तिस्ना भी आशरा का कर रहा है तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं. एक आदमी कहता है फुलान इन अलैया आशरतुन इल्ला आशरतन, फुलां के मुझ पर 10 दिरहम है मगर 10 दिरहम, तो ये तो कुल में से कुल का इस्तिस्ना कर रहा है, तो कुल में से जब कुल निकाल लेंगे तो बाकी कुछ बचा ही नहीं. और इस्तिस्ना तो किस चीज का नाम था, तकल्लुम बिल बाकी का, तो यहां बाकी बचा ही नहीं, किस पर उसने तकल्लुम किया है. बात समझ में आ गई, मालूम हुआ कुल का कुल से इस्तिस्ना सही नहीं. हां कुल से बाज का इस्तिस्ना सही है ताकि कुछ बाकी बच जाए जिसके बारे में हम कह सकें कि ये मुतकल्लिम ने इस पर कलाम किया है, इस पर उसने तकल्लुम किया है. तो कहते हैं फैसे हुस्तिस्ना उलबाजी मिनल जुमलती, तो लिहाजा मजमूए में से बाज का इस्तिस्ना सही है. लिअन्नहु यबका तकल्लुमु बिलबाजी बादहू, इसलिए क्योंकि मजमूए में से बाज का जब इस्तिस्ना कर लिया जाए तो वो लिअन्नहु यबका तकल्लुमु बिलबाजी बादहू, इसलिए क्योंकि इस सूरत में भी तकल्लुम बिलबाज बाकी रह जाता है. बादहू ऐ जब आप क्या कर दें कुल में से बाज का इस्तिस्ना कर दें तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो बाकी बच जाता है, लिहाजा तकल्लुम बिल बाज बाकी रहेगा. भाई बात समझ में आ गई. फिर तर्जमा देख लीजिए, फयसे हुस्तिस्ना उलबाज मिनल जुमलती, लिहाजा मजमूए में से बाज का इस्तिस्ना सही है. लिअन्नहु यबका तकल्लुमु बिलबाज बादहू, इसलिए क्योंकि मजमूए में से बाज का इस्तिस्ना करने के बाद भी तकल्लुम बिलबाज बाकी रहता है. वला यसे हुस्तिस्ना उलकुल्ल मिनल कुल्ली, और कुल का इस्तिस्ना कुल से ये सही नहीं. लिअन्नहु ला यबका बादहु शैउन, इसलिए क्योंकि उसके बाद कोई चीज बाकी नहीं रहती. लियसीरा मुतकल्लिमन बिही, ताकि वो शख्स उस पर कलाम करने वाला हो जाए. वसारिफन लिल्लफ्ज इलैही, और लफ्ज को उसकी तरफ फेरने वाला हो जाए. भाई एक शख्स ने जब यूं कहा था लिफुलान इन अलैया अशरतुन इल्ला तिसअतन, तो यहां बाकी एक बच गया था. गोया कहने वाले ने यूं कहा है लिफुलान इन अलैया दिरहमुन, लिफलानिन अलैया दिरहमुन कहा है, लेकिन अगर कुल का कुल से इस्तिस्ना करेगा तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं जिसकी तरफ लफ्ज को फेरा जाए और यूं कहा जाए इसने ये कहा है, वहां तो कुछ बचा ही नहीं. लिफलानिन अलैया आशरतुन इल्ला आशरतन, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं जिस पर इसने कलाम किया हो, लिहाजा कुल का कुल से इस्तिस्ना सही नहीं. यह माना है लिया नहू ला यबका बादा हुशे उन, इसलिए क्योंकि कुल का कुल से इस्तिस्ना करने के बाद कोई चीज बाकी नहीं बचती. लियसीर मुतकल्लिमन बिही, ताकि वो शख्स उस पर तकल्लुम करने वाला हो जाए. वसारिफन लिल्लफ्ज इलैही, और लफ्ज को उसकी तरफ फेरने वाला हो जाए. वइन्नमा यसहुल इस्तिस्ना इदा काना मौसूलन बिही, यह तीसरा जाब्ता आ गया कि इस्तिस्ना सही होता है इदा काना मौसूलन बिही, जब वो माकबल के साथ मिला हुआ हो, माकबल कलाम के साथ मिला हुआ हो. अगर उसके साथ मिला नहीं है, जुदा है, फिर भी इस्तिस्ना सही नहीं. तो तीन जाब्ते हो गए, तीन जाब्ते हो गए. पहला जाब्ता क्या कि इस्तिस्ना तकल्लुम बिल बाकी का नाम है. दूसरा कि बास का इस्तिस्ना तो कुल से सही है लेकिन कुल का इस्तिस्ना कुल से सही नहीं. और तीसरा जाब्ता कि इस्तिस्ना को माकबल के साथ मिला हुआ होना चाहिए, दरमियान में फसल ना हो, सुकूत ना हो. गई तो कहते हैं वही नमा यसिहुल इस्तिस्ना इदा काना मौसूलन बिही, और इस्तिस्ना सही होगा जब वो उस मुस्तस्ना मिनहू के साथ मिला हुआ हो. कमा ज़करना मिन कबलू, जैसे कि हमने पहले जिक्र कर दिया कि अगर दरमियान में फसल आएगा फिर तो ये गोया रुजू करना चाहता है, और तलाक में तो रुजू नहीं हो सकता। तो कहते हैं वह इजा सा बता हाजा, और जब यह बात साबित हो गई यानी ये तीनों जाबते साबित हो गए, फफिल फसल अव्वली, तो पहली फसल में यानी पहली सूरत में, वो जो मतन में दो मसले जिक्र किए थे, पहली सूरत क्या, खावन ने बीवी से क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, कि तुझे तीन तलाकें हैं मगर एक। तो देखो यहां पर मुस्तस्ना मिनहू क्या है, तीन सलासन, और मुस्तस्ना क्या है, वाहिद एक, और तीन में से एक को निकाल दें तो कितना बचा, दो, लिहाजा यहां दो तलाकें वाके होंगी, यहां दो तलाकें। तो कहते हैं वैदा सब अतहादा फफिल फसल अव्वली, जब यह बात साबित हो गई तो पहली फसल के अंदर अल मुस्तस्ना मिनहू सिंतानी, मुस्तस्ना मिनहू दो हैं भाई, मुस्तस्ना मिनहू तो वहां तीन है, अंति तालिकुन सलासन इल्ला वाहिदतन, तो मुस्तस्ना मिनहू क्या, तीन, और साहिबे हिदाया क्या फरमा रहे हैं कि मुस्तस्ना मिनहू दो हैं, तो जवाब यह कि वो ये भी उसी साहिबे हिदाया मुख्तसर इबारत लेकर आए हैं, उनके कहने का वही मतलब है जो ऊपर भी इन्होंने जिक्र किया था, ऊपर भी मुस्तस्ना मिनहू जिक्र किया और मुराद क्या था, मां बकिया मिनल मुस्तस्ना मिनहू, मां बकिया मिनल मुस्तस्ना मिनहू, तो यहां पर भी मां बकिया जो मुस्तस्ना मिनहू में से है वो मुराद है, और तीन में से एक का इस्तेसना हो गया तो मां बकिया कितना हुआ, दो। तो वही बयान कर रहे हैं कि पहली फसल के अंदर अल मुस्तस्ना मिनहू सिंतानी, के मुस्तस्ना मिनहू दो है, यानी वो जो उसमें से बाकी बच गया है, किसमें से, मुस्तस्ना मिनहू में से जो बाकी बच गया है वो दो है, फयकानी, तो वो दोनों तलाकें वाके हो जाएंगी, व फिसानी, और दूसरी फसल में, दूसरी सूरत क्या थी, खामन ने क्या कहा, अंति तालिकुन सलासन इल्ला सिंतैनी, तो यहां मुस्तस्ना मिनहू में से दो निकाल दें तो कितना रह गया, एक, तो एक तलाक वाके होगी। तो कहते हैं वह फिसानी वाहिदतुन, और दूसरी सूरत के अंदर वो जो मुस्तस्ना मिनहू से बाकी है वो एक है, फयकउ वाहिदतुन, तो एक तलाक वाके हो जाएगी, वलौ काल इल्ला सलासन, और अगर खामन ने इल्ला सलासन कहा यानी कुल से कुल का इस्तेसना किया, अंति तालिकुन सलासन इल्ला सलासन, मुस्तस्ना मिनहू भी सलासन और मुस्तस्ना भी सलासन, तो ये तो इस्तेसना वो कर रहा है कुल का कुल से, और कुल का तो कुल से इस्तेसना सही नहीं। दूसरे लफ्जों में यूं कहो, उसने कहा अंति तालिकुन सलासन, तुझे तीन तलाकें हैं, और इल्ला सलासन के जरिए अब वो इन तीनों से रुजू करना चाहता है, क्या करना चाहता है, रुजू, और तलाक के अंदर तो रुजू हो नहीं सकता, तो लिहाजा यहां जब कुल का कुल से इस्तिस्ना किया तो यह सही नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना तो लग्व हो गया और वो तीनों तलाकें वाकई हो गई भाई। तो कहते हैं वलौ काल इल्ला सलासन, और अगर खावन ने बीवी से कहा इल्ला सलासन यानी अंति तालिकुन सलासन इल्ला सलासन कहा, यकउ सलासु, तो तीनों तलाकें वाकई हो जाएंगी, لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ, इसलिए क्योंकि ये कुल का कुल से इस्तिस्ना है, फलम यसिह الْاِسْتِثْنَاءُ, तो ये इस्तिस्ना सही नहीं, وَاللَّهُ عَلَمُ, और अल्लाह खूब जानने वाले हैं, باب طلاق المريض, ये बाब है मरीज की तलाक के बयान में, याद रखो मरीज से यहां आम मरीज मुराद नहीं, बल्कि वो शख्स मुराद है जो मरजुल मौत में मुबतला हो, जो किसमें मुबतला हो, मरजुल मौत में मुबतला हो, याद रखो जब कोई शख्स मरजुल मौत में मुबतला होता है तो वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो जाता है, अब यह शख्स दुनिया से जाने वाला है और इसका माल वारिसों की तरफ मुंतकिल होने वाला है, लिहाजा वारिसों का हक इसके माल के साथ मुतालिक हो गया, और मरजुल मौत का पता कैसे चलेगा, तो कहते हैं मरजुल मौत की कुछ अलामतें तो हैं, मसलन कोई शख्स ज्यादा ही बीमार हो गया, बिस्तर से लग गया, अब उसके लिए उठना चलना फिरना और काम करना सेहतमंद लोगों की तरह मुश्किल हो गए और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, तो मालूम हुआ यह मरजुल मौत है, इसका कतई तौर पर पता मौत से ही चलेगा, इसी बीमारी से यह आदमी मर गया तो हम कहेंगे यह सारा मरजुल मौत था, लेकिन अगर यह शख्स तंदुरुस्त हो गया तो फिर इसको मरजुल मौत शुमार नहीं करेंगे। और फिर याद रखना कि इंसान सेहत की हालत में हो तो अपने सारे माल में जिस तरह चाहे वो तसरुफ कर सकता है, वो अपने सारे माल को आग लगाना चाहता है लगा सकता है, वो अपने सारा माल किसी को देना चाहता है वो सारा दे सकता है, लेकिन जब मरजुल मौत में गिरफ्तार हो गया अब वारिसों का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो गया, लिहाजा अब ये सारे माल में तसरुफ नहीं कर सकता। तो अब ये सारे माल में तसरुफ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा सुलुस में तसरुफ कर सकता है, यानी किसी के लिए वसीयत करता है तो वसीयत सुलुस माल तक दी जाती है, इससे ज्यादा नहीं भाई, क्योंकि उसे बाकी माल में वारिसों का हक है भाई। हां अगर वारिस इजाजत दे दें फिर सारे माल की वसीयत भी वो किसी के लिए कर सकता है, क्योंकि मान्या क्या था, वारिसों का हक भाई, और जब उन्होंने खुद इजाजत दे दी तो उन्होंने खुद अपना हक साकित कर दिया, तो अब सारे माल की वसीयत भी कोई शख्स किसी के लिए कर सकता है। और फिर याद रखो जब किसी शख्स का इंतकाल होता है उसके माल में से सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम किया जाता है, उसके बाद जो माल बच जाए उसके जरिए उसके कर्जे अदा किए जाएंगे, चाहे सारा माल ही कर्जों में क्यों ना खत्म हो जाए, सारी अदायगी की जाएगी ताकि इस शख्स की आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएं। तो लिहाजा कर्जे अदा करेंगे चाहे सारा माल ही खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर कर्जे नहीं थे या थोड़े थे बाकी माल बच गया तो फिर जितना बच गया उसके सुलुस में वसीयत नाफिस करेंगे, तीसरे हिस्से में अगर इसने कोई वसीयत की है, और फिर जो बाकी माल बचेगा वो वारिसों के दरमियान तकसीम होगा। लिहाजा मालूम हुआ एक शख्स किसी के लिए इकरार करता है कि मैंने फलां के इतने पैसे देने हैं, फलां के इतने पैसे देने हैं, इसे मैंने किसी जमाने में इतने पैसे लिए थे, तो सेहत की हालत में ये इकरार करेगा तो वो पैसे उस पर लाजिम है, देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मरजुल मौत के अंदर कोई शख्स ये इकरार करता है तो फिर इस सूरत में ये भी दैन हो गया, इस शख्स के जिम्मे तो आ गया लेकिन ये दैन सेहत से कम दर्जे का है। कुछ दुयून वो हैं जो इस पर सेहत की हालत में आए थे या जिन पर गवाह मौजूद हैं, जिन पर गवाह मौजूद हों वो भी सब दैन सेहत हैं, चाहे मरजुल मौत की हालत में ही दैन क्यों ना लिया हो इसने, जब उस पर गवाह मौजूद हैं तो ये सब क्या शुमार करेंगे, दैन सेहत। तो दैन सेहत वो है जिस पर गवाह मौजूद हो या इसने सेहत की हालत में उसका इकरार किया हो, जबकि अगर मरजुल मौत में उसने एक दैन का इकरार किया है कि फलां के मैंने इतने पैसे देने हैं और इससे पहले किसी को उसका पता नहीं था, उस पर गवाह वगैरह मौजूद नहीं है, तो फिर याद रखो ये दैन मरज है। ये क्या है, देने मरज भाई। और मैंने आपको बतला दिया कि किसी शख्स के मरने के बाद पहले उसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं और फिर दुयून अदा करते हैं चाहे सारा माल ही क्यों ना खत्म हो जाए। लेकिन दुयून अगर दो किस्म के हैं, कुछ देने सेहत हैं जिनका इकरार इसने सेहत की हालत में किया था या जिन पर गवाह मौजूद हैं या जिसका सबको पता था, और कुछ दुयूने मरज हैं भाई जो उसने मरज की हालत में, मरजुल मौत की हालत में इकरार किया और उस पर कोई गवाह नहीं, किसी को उसका पहले पता नहीं था, तो फिर याद रखो कर्जे तो सारे ही अदा करने हैं चाहे दुयूने सेहत हो चाहे दुयूने मरज, लेकिन दुयूने सेहत का दर्जा पहले और दुयूने मरज का दर्जा बाद में है, लिहाजा पहले दुयूने सेहत अदा करेंगे, अगर वो सारे अदा हो गए और पैसे बच गए तो दुयूने मरज भी सारे अदा कर देंगे। तो ये थी मरजुल मौत की कुछ तफसील मैंने बयान कर दी। एक और जाब्ता याद रखना भाई, एक और जाब्ता कि वारिस के लिए न वसीयत जायज है न इकरार जायज है। जिन लोगों ने उस शख्स का वारिस बनना है उनके लिए यह वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद मेरे फलां बेटे को 10 लाख रुपए मेरे माल में से दे देना, मैं उसके लिए वसीयत करता हूं, नहीं भाई वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं, वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं। वजह यह कि वारिसों का हक अल्लाह ताला ने मुकरर कर दिया है। अब आप चाहते हो एक वारिस को ज्यादा माल मिल जाए, नहीं भाई, आप कौन होते हैं उसको ज्यादा माल देने वाले, सबके हिस्से अल्लाह ने मुकरर कर दिए हैं तो उनको उनके मुकरर हिस्सों के मुताबिक ही मिलेगा, तो वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं। इसी तरह यह भी याद रखना वारिस के लिए इकरार भी नहीं जायज। एक शख्स कहता है अपने किसी वारिस के बारे में, मसलन फुला जो बेटा है इससे मैंने 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे, ये इसको बाद में अदा कर देना भाई, नहीं भाई वारिस के लिए इकरार सही नहीं है। तो वारिस के लिए ना वसीयत जायज ना इकरार जायज है भाई, क्योंकि असल में दिलों में बदगुमानी आती है कि शख्स क्या करना चाहता है, इस एक वारिस को फायदा ज्यादा देना चाहता है कि इसको ज्यादा माल मिल जाए भाई, लिहाजा उस इकरार को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो वारिस के लिए वसीयत भी जायज नहीं और इकरार भी जायज नहीं है। असल में हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला वसीयत अली वारिसिन, वारिस के लिए वसीयत नहीं है। देखा हदीस में मना आ गया, वारिस के लिए वसीयत नहीं की जा सकती। और वसीयत तो ज्यादा से ज्यादा कितने माल की होती है? तीसरे हिस्से की। तो जब वारिस के लिए वसीयत जायज नहीं है तो इकरार बतरीके औला जायज नहीं होगा, क्योंकि इकरार तो दुयून में आ जाएगा और दुयून तो सारा माल भी चाहे दुयून में चला जाए देना पड़ता है भाई। तो जब सुलुस माल की वसीयत उसके लिए जायज नहीं है तो फिर इकरार बतरीके औला जायज नहीं होगा। तो वारिस के लिए ना वसीयत जायज और ना इकरार जायज है। अब देखिए भाई, कहते हैं बाबू तलाकिल मरीजी, जी ये बाब है मरीज की तलाक के बयान में। इदा तल्लकर रजुल उम्रअतहु फी मरज़ मौतिहि तलाकं बाइनन फमाता वहिय फिल इद्दति वरिसतहु व इन माता बादन क़िज़ाइल इद्दति फला मीरासा लहा। भाई याद रखो, कोई शख्स अगर मरजुल मौत में गिरफ्तार हो गया, बिस्तर से लग गया है, बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और अब सबको नजर आ रहा है इसका बचना मुश्किल है, बीमारी बढ़ती जा रही है, ये अपने काम काज अब आम लोगों की तरह उठकर सही तरीके से नहीं कर सकता भाई, या तो उठना ही मुश्किल है, अगर उठता भी है तो चंद कदम ही बमुश्किल चल सकता है। तो अब सबको नजर आ रहा है इसकी मौत करीब आ गई है, और मरजुल मौत में मैंने आपको बताया वारिसों का हक माल के साथ मुतालिक हो जाता है। अब इस मरजुल मौत के अंदर यह शख्स अपनी बीवी को तलाके बाइन देता है तो दिलों में बदगुमानी आती है कि यह शख्स तो वैसे ही मरने वाला है, मालूम हुआ यह बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भाई आपने अगर तलाक देनी ही थी तो पहले जिंदगी में तलाक दे देते, सेहत की हालत में तलाक दे देते, लेकिन अब जब आपकी मौत बिल्कुल सामने आ गई है, करीब आ गई है, तो अब आप उसको तलाके बाइन दे रहे हैं, मालूम हुआ आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा शरीयत ने उसके तसर्रुफ को मुअख्खर कर दिया। तलाके बाइन, याद रखो, कोई शख्स जब अपनी बीवी को तलाक देता है, अगर वो तलाके रजई दी है और इद्दत के अंदर उस आदमी का इंतकाल हो जाए तो फिर वो औरत उसकी वारिसा बनेगी, क्योंकि तलाके रजई से तो निकाह नहीं टूटता भाई। लेकिन अगर तलाके बाइन दे दे कोई शख्स अपनी बीवी को तो तलाके बाइन से तो निकाह टूट जाता है, उसके बाद अगर दोबारा इस औरत को रखना है तो नए सिरे से नया निकाह करना पड़ेगा और नया महर मुकर्रर करना पड़ेगा। तो तलाके बाइन से तो निकाह टूट जाता है, लिहाजा अब अगर इद्दत के अंदर भी खावन का इंतकाल हो जाए यह औरत वारिसा नहीं बनती भाई। जिस औरत को खावन तलाके बाइन दे दे वो इस खावन की वारिसा नहीं बनती, क्योंकि निकाह टूट चुका है, तलाके बाइन देते ही निकाह खत्म। तो लिहाजा यह शख्स जो है ये मरजुल मौत में बीवी को तलाके बाइन दे रहा है, मालूम हुआ यह बीवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, अगर तलाक देनी थी तो पहले तलाक दे देते तो दिलों में बदगुमानी आती है कि मालूम हुआ यह शख्स क्या करना चाहता है, बीवी को नुकसान देना चाहता है, अगर तलाक देनी थी तो पहले सेहत की हालत में आप दे देते, लेकिन इस वक्त तो आप मरने वाले हैं, तो दिलों में बदगुमानी आती है। चुनांचे इस वजह से शरीयत ने उस आदमी के तसर्रुफ को मुअख्खर कर दिया। तलाके बाइन से क्या होता था, औरत जुदा होती थी और वारिसा नहीं बनती थी, तो यह शख्स उस औरत के हक को जो बातिल करना चाहता है वरासत के अंदर, इसके इस तसर्रुफ को मुअख्खर कर देंगे इद्दत तक। जब तक इस औरत की इद्दत है यह वारिसा बनेगी अगर खावंद का इंतकाल हो गया। इद्दत के अंदर अंदर अगर खावंद का इंतकाल हुआ तो यह औरत वारिसा बनेगी, अगरचे खावंद इसे तलाके बाइन दे चुका है और तलाके बाइन से औरत का हक वरासत में साकित हो जाता है, लेकिन यहां इसको साकित नहीं करेंगे, बल्कि जब इद्दत पूरी हो जाएगी और अभी तक वो शख्स जिंदा है फिर उसका हक साकित हो गया। अब तो इद्दत भी गुजर गई, अब तो इद्दत भी गुजर गई, लिहाजा अब वो औरत वारिसा नहीं बनेगी जब इद्दत के बाद उस खावन का इंतकाल हो। तो क्या हासिल कलाम क्या हुआ कि मरजुल मौत में कोई शख्स अपनी बीवी को तलाके बाइन भी दे दे फिर भी इद्दत तक वो वारिसा रहेगी, हालांकि तलाके बाइन तो देते ही निकाह खत्म हो जाता है, फिर औरत वारिसा नहीं बनती, लेकिन यहां पर इस तलाके बाइन के असर को मुअख्खर कर दिया गया। क्यों मुअख्खर किया गया, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती थी कि यह शख्स इस औरत को नुकसान देना चाहता है भाई। तो याद रखना इस बाब के अंदर जो मसाइल जिक्र हो रहे हैं इन सब के अंदर तलाके बाइन की बात चलेगी, चाहे वो जिक्र करें या जिक्र न करें, क्योंकि तलाके रजई में तो इद्दत के अंदर बिल इत्तेफाक औरत वारिसा बनती है, तो तलाके बाइन की बात होगी। और नीज ये भी याद रखना, खावंद का इंतकाल इद्दत के अंदर हो तब वारिसा बनेगी, अगर इद्दत के बाद खावंद का इंतकाल हुआ फिर वारिसा नहीं बनेगी। तो कहते हैं वही दातल लकर रजुल उम्र आता हूं फी मरजी मौत ही तलाक अंबा इनन, और जब किसी शख्स ने अपनी बीवी को अपने मरजुल मौत के अंदर तलाक बाइन दे दी, फमा तवही फिल इद्दती, तो यह शख्स मर गया इस हाल में कि औरत अभी इद्दत में है, वारिसत हूं, तो यह औरत इसकी वारिसा बनेगी, अगरचे निकाह टूट चुका है फिर भी वारिसा बनेगी। वह इन माता बादन किजा इल इद्दती, और अगर यह शख्स इद्दत के गुजरने के बाद मरा, फला मीरास अलहा, तो अब उस औरत के लिए कोई मीरास नहीं होगी क्योंकि इद्दत भी गुजर चुकी है, भाई निकाह पूरे तौर पर मुनक़ति हो गया। वकाल शाफ़ई रहमहुल्लाहु ला तरिसु फिल वजहैन, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में वारिस नहीं बनेगी, चाहे खावंद का इंतकाल इद्दत में हो चाहे खावंद का इंतकाल इद्दत के बाद हो, इसलिए क्योंकि इसने कौन सी तलाक दी है, तलाके बाइन दी है, और तलाके बाइन से तो निकाह टूट जाता है, जब निकाह टूट गया तो अब यह औरत वारिसा नहीं बनेगी। तो कहते हैं वकाल शाफी रहमहुल्लाहु ला तरिसु फिल वजहैनी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह औरत दोनों सूरतों में वारिसा नहीं बनेगी, यानी चाहे इद्दत गुजरी हो चाहे न गुजरी हो, लअन्न ज़ौजियत क़द बतलत बिहाज़ल आरिज़ी, इसलिए क्योंकि ज़ौजियत जो है वो बातिल हो गई, मियां बीवी वाला रिश्ता क्या हो गया, खत्म हो गया। लिया ज़ौजियत क़द बतलत, बल्कि यूं कर लें, ज़ौजियत, ज़ौजियत का माना है ज़ौज होना, मस्दर है ना, या मुशद्दद और गोलता साथ मिलाई जाए तो मस्दर बन जाता है लफ्ज, तो ज़ौजियत का क्या माना है, ज़ौज होना, और ज़ौज खावंद को भी ज़ौज कहते हैं अरबी जुबान में और बीवी को भी ज़ौज कहते हैं, तो यहां ज़ौजियत का तर्जमा कर लें बीवी होना, जब खावन ने तलाक बाइन दी है तो बीवी होना बातिल हो गया, अब यह औरत इसकी बीवी नहीं है, निकाह टूट चुका। तो कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वो वारिसा नहीं बनेगी, लिअन्न ज़ौजियत क़द बतलत बिहाद अल आरिज़ी, इसलिए क्योंकि बीवी होना वो तहकीक बातिल हो गया इस आरिज की वजह से, ये जो तलाक पेश आ गई, वही सबब, और बीवी होना ही तो सबब था वारिस होने का, वो औरत वारिसा क्यों बन रही थी, बीवी होने की वजह से, तो बीवी होना तो बातिल हो गया। वलिहादा ला यरिसुहा इदा मातत, और इसीलिए यह खावंद भी इस औरत का वारिस नहीं बनेगा, इजा मातत, जब यह औरत मर जाए। सूरत मसला यह, खावंद मरजुल मौत में है और मरजुल मौत के अंदर इसने बीवी को तलाके बाइन दे दी, और तलाके बाइन दे दी है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह औरत इस खावंद की अब वारिसा नहीं बनेगी, चाहे खावन का इंतकाल इद्दत में हो चाहे इद्दत के बाद हो। कहते हैं कि आप देखते नहीं, अगर खावन का इंतकाल हो जाए, औरत इद्दत में है, ए अहनाफ आपके नजदीक औरत जब तक इद्दत में है और खावन का इंतकाल हो जाए तो औरत वारिसा बनेगी, लेकिन अगर औरत इद्दत में है और औरत का इंतकाल हो गया, इद्दत के अंदर अंदर औरत का इंतकाल हो गया, तो ए अहनाफ आप भी कहते हो खावन इसका वारिस नहीं बनेगा, ए अहनाफ आप भी क्या कहते हो खावंद इसका वारिस नहीं बनेगा, भाई अगर बीवी इसकी वारिस बन रही थी तो खावंद को भी इसका वारिस बनना चाहिए जी। आपने क्या कहा, मरजुल मौत ने खावंद ने बीवी को तलाक दी है, आपने कहा इद्दत के अंदर अगर खावंद का इंतकाल हुआ तो बीवी वारिस बनेगी जी। अगर बीवी उसकी वारिस बनेगी तो अगर इद्दत के अंदर औरत का इंतकाल हो गया खावंद से पहले ही, खावंद मरजुल मौत में है लेकिन इंतकाल किसका हो गया, बीवी का हो गया, तो खावंद को भी तो उसका वारिस बनना चाहिए आपके उसूल के मुताबिक, लेकिन आप भी कहते हैं ए अहनाफ के खावंद उसका वारिस नहीं बनेगा, बीवी वारिसा बनेगी और खावंद वारिस नहीं बनेगा। मालूम हुआ निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, अगर पूरे तौर पर न टूटा होता तो खावंद भी वारिस बनता भाई जी। तो यह माना है वलिहाजा ला यरिसुहा इदा मातत, और इसी वजह से कि ज़ौजियत चूंकि खत्म हो चुकी है इसी वजह से ला यरिसुहा खावन भी इस औरत का वारिस नहीं बनेगा, इजा मातत जब औरत मर जाए यानी इद्दत के अंदर। वलना, और हमारी दलील यह है, अब हमारी दलील आ गई, हमारी दलील यह है कि अन्न ज़ौजियत सबब इरसिहा फी मरज़ी मौतिही, हम कहते हैं देखो इसने मरजुल मौत में तलाक दी है, खावन ने मरजुल मौत में तलाक बाइन दी है, और मरजुल मौत के अंदर तो औरत का हक खावन के माल से मुतालिक हो चुका था, मरजुल मौत में वारिसों का हक माल से मुतालिक हो जाता है, तो औरत का हक इसके माल के साथ मुतालिक हो चुका था और खावंद अब इसको तलाक देकर इसके उस हक को बातिल करना चाहता है, लिहाजा इसकी इजाजत उसे नहीं दी जाएगी, यानी इसको मुअख्खर कर दिया जाएगा इद्दत के गुजरने तक। भाई कि इद्दत के गुजरने तक ये इसका हक बातिल नहीं, अगर खावंद मर गया तो ये वारिसा बनेगी। भाई मसला भी समझ में आ रहा है कि नहीं? वला ना, हमारी दलील यह है कि अन्ना ज़ौजियत सबब इरसी हाफी मरजी मौती ही, कि ज़ौजियत यानी बीवी होना सबब इरसी हा, ये इस औरत के वारिस होने का सबब है। फी मरजी मौती ही, खावन के मरजुल मौत में, खावन के मरजुल मौत में बीवी होना ये वारिस होने का सबब है, ये वारिस बन रही है, इसका हक मुतालिक हो चुका है। तवज्जो है, इसका हक मुतालिक हो चुका है। वह ज़ौजु कसदा इब्तालहू, और खावन ने उसके इस हक को बातिल करने का इरादा किया है। औरत का हक मुतालिक हो चुका है और खावन उसको बातिल करना चाहता है, तो कहते हैं वह ज़ौजु कसदा इब्तालहू, और खावन ने इस सबब को बातिल करने का इरादा किया है। फयुरद्दु अलैहि कस्दुहू, तो लिहाजा खावन पर उसके इरादे को रद्द कर दिया जाएगा। बिताखीर अमलिही, कि उसकी तलाक के अमल को मुअख्खर कर दिया जाएगा। इला जमान इनकिज़ा इल्इद्दत, इद्दत के गुजरने के जमाने तक, कि इद्दत के गुजरने के जमाने तक तुम्हारी तलाक का अमल मुअख्खर हो गया, ये विरासत से महरूम नहीं होगी जब तक इद्दत बाकी है। भाई दफ़अन लिज़ररी अनहा, दूर करने के लिए नुकसान को, अनहा उस औरत से। वक़द अमकाना, और तहकीक मुमकिन भी है औरत से जरर को दूर करना। भाई एक तो सूरत यह है कि औरत गैर मदखूल बिहा है, खावंद ने उसे सोहबत ही नहीं की अभी, तो इस किस्म की औरत को तो खावंद जैसे ही तलाक देता है साथ ही वो बायना हो जाती है और उस पर इद्दत भी नहीं होती, उस पर इद्दत भी नहीं होती, निकाह पूरे तौर पर खत्म हो गया, वो फौरन उसी वक्त कहीं आगे भी निकाह कर सकती है। तो जो गैर मदखूल बिहा है उसके अंदर तो हम इस तलाक के असर को मुअख्खर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इद्दत ही नहीं है, वहां इद्दत ही नहीं है, लिहाजा वहां पर तो इस तलाक के असर को मुअख्खर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मदखूल बिहा औरत, उसके अंदर तो मुमकिन है कि इद्दत के गुजरने तक इस तलाक के असर को मुअख्खर कर दिया जाए। तलाक बाइन के जरिए खावन क्या करना चाहता था, औरत को उसके हक से महरूम करना चाहता है, तो इस क्या किया जाएगा, इसके असर को, इस तलाक बाइन के असर को मुअख्खर कर दिया जाएगा कि इद्दत के गुजरने तक। तो मदखूल बिहा में तो यह मुमकिन है, गैर मदखूल बिहा में मुमकिन नहीं है। तो जहां मुमकिन है वहां तो हम कोशिश करेंगे भाई। तो कहते हैं दफ़अन लिज़ररी अनहा, उस औरत से नुकसान को दूर करने के लिए। वक़द अमकना, और तहकीक मुमकिन भी है। लिअन्ना निकाह फिल इद्दत यबका फी हक बाज़िल आसारी, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इद्दत के अंदर यबका वो बाकी रहता है, फी हक बाज़िल आसारी, बाज़ आसार के हक में निकाह के कुछ असरात बाकी रहते हैं। भाई देखो खावन तलाक बाइन भी दे दे तो भी इद्दत के दौरान नफका खावंद ही को देना पड़ेगा, रिहाइश भी खावंद ही के जिम्मे है, नीज खावंद उसको घर से निकलने से भी मना कर सकता है इस दौरान, और नीज इस इद्दत के दौरान औरत आगे भी कहीं निकाह नहीं कर सकती। तो देखो इद्दत के अंदर निकाह के कुछ असरात बाकी होते हैं, जब इद्दत के अंदर निकाह के कुछ असरात बाकी हैं तो ये वाला असर भी बाकी रहेगा कि वह औरत वारिसा बनेगी। निकाह जब होता है तो औरत वारिसा बनती है ना, नहीं तवज्जो मेरा ख्याल। भाई देखो ना, किसी शख्स की बीवी हो तो उसको नफका भी देना पड़ेगा, वो उसको रिहाइश भी देगा, और नीज उसको घर से निकलने से भी वो मना कर सकता है, नीज ये औरत कहीं और भी निकाह नहीं कर सकती क्योंकि इस शख्स की मनकूहा है। तो औरत पर ये पाबंदियां होती हैं और खावंद की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, और जब खावंद तलाक दे दे तो उस वक्त तो निकाह टूट गया, मसलन तलाके बाइन दे दी, लेकिन फिर भी नफका किसके जिम्मे है, खावंद के जिम्मे, तो ये तो निकाह का असर है, नफका तो बीवी का हुआ करता है और इससे तो निकाह टूट चुका है, लेकिन फिर भी ये निकाह का असर है, नफका देना पड़ेगा, रिहाइश भी देनी पड़ेगी, ये भी निकाह का असर है, रिहाइश तो बीवी को देना पड़ती है और इसको तो तलाक दे चुका है लेकिन फिर भी रिहाइश देना पड़ेगी, मालूम हो यह निकाह का असर है। इसी तरह इस यह औरत अगर बच्चे को जन्म देगी तो वो इसी खावंद का शुमार होगा, और बच्चा तो बीवी जन्म दे तो फिर ही खावन का शुमार होता है, वैसे तो खावन का शुमार नहीं होता, लिहाजा मालूम हुआ यह भी निकाह का असर है। तो निकाह के बहुत से असरात बाकी हैं और निकाह के असरात में से एक यह भी है कि बीवी खावन की वारिसा बनती है। तो जब इद्दत के अंदर निकाह के और असरात बाकी हैं तो यह वारिसा होने वाला असर भी बाकी करार दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्न निकाह फिल इद्दती यबका फी हक बाज़िल आसार, इसलिए क्योंकि निकाह जो है इद्दत में वो बाकी रहता है बाज असरात के हक में, फजाज अन यबका फी हक इरसिहा अनहु, लिहाजा जायज है कि निकाह बाकी रहे फी हक इरसिहा अनहु, इस खावन से इस औरत के वारिसा होने के हक में, इस औरत का इस खावन का वारिसा होने के हक में भी निकाह को बाकी करार दिया जाए, निकाह को बाकी करार दिया जाए इद्दत तक। बेखिलाफ इमा बादल इनकजाई, बखिलाफ इद्दत के गुजर जाने के बाद, लिअन्नहु ला इम्काना, क्योंकि अब मुमकिन नहीं है, जब इद्दत गुजर जाती है फिर निकाह का कोई असर बाकी नहीं रहता, लिहाजा वारिसा होने का असर भी बाकी नहीं रह सकता। तो कहते हैं बेखिलाफ इमा बादल इनकजाई, बखिलाफ इद्दत के गुजर जाने के लिए, अन्नहु ला इम्काना, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं है। वह ज़ौजियतु फी हाज़िही अल-हालति लैसत बिसबबिन, अब वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने कियास किया था इस औरत को खावंद पर कि अगर इस मरजुल मौत के अंदर खावंद ने तलाक बाइन दे दिया और फिर खावंद से पहले बीवी का इंतकाल हो गया तो ए अहनाफ आपके नजदीक भी खावंद इस औरत का वारिस नहीं बनेगा। मालूम निकाह टूट चुका है, जब खावंद इसका वारिस नहीं बन रहा तो इद्दत के अंदर औरत को भी इसका वारिस नहीं बनना चाहिए। तवज्जो है, तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि खावंद इसलिए वारिस नहीं बनेगा क्योंकि मरजुल मौत में खावंद मुबतला है। तवज्जो है, तो बीवी का हक मुतालिक हो गया खावंद के माल के साथ क्योंकि खावंद मरजुल मौत में है, खावंद मरने वाला है, तो बीवी का हक मुतालिक हो गया किससे? खावंद के माल से। लेकिन खावंद का हक बीवी के माल से मुतालिक नहीं है, बीवी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके तो मरने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। तो मरजुल मौत में बीवी का हक खावन के माल से मुतालिक होता है, खावन का हक उसके माल से मुतालिक नहीं है। जब खावन का हक उसके माल के साथ मुतालिक नहीं है तो लिहाजा खावन वारिस भी नहीं बनेगा। और फिर बिलखसूस जब तलाक भी कौन दे रहा है? खावन दे रहा है, गोया खावन खुद अपना हक साकित कर रहा है। खावन तलाक ना देता तो उसने वारिस बनना था, लेकिन यह खुद तलाक देकर अपने हक को बातिल कर रहा है। अव्वल तो इसका हक साबित ही नहीं है क्योंकि अगर बीवी मरजुल मौत में होती तो फिर खावन का हक उसके माल से मुतालिक होना था। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह ज़ौजियत फी हादिहिल हालति, और खावंद होना, यहां ज़ौजियत का तर्जमा कर लें खावंद होना, वह ज़ौजियत और खावंद होना फी हादिहिल हालति, इस हालत में, लैसत बिसबबिन, यह सबब नहीं है, लिइरसिही अनहा, के खावंद उससे वारिस हो। मरजुल मौत में कौन मुबतला? खावन। तो बीवी का हक उसके माल से मुतालिक हुआ है, खावन का हक उसके माल से मुतालिक नहीं। बीवी भी अगर मरजुल मौत में होती फिर खावन का भी उसके माल से हक मुतालिक हो जाता, लेकिन बीवी तो मरजुल मौत में मुबतला नहीं, लिहाजा खावन का हक उसके माल के साथ मुतालिक नहीं है भाई। तो कहते हैं वह ज़ौजियतु फी हादिहिल हालति लैसत बिसबबिन लिइरसिही अनहा, और खावन होना इस हालत में यह उस औरत से वारिस होने का सबब नहीं है, फतबतुलु फी हक़िही, तो लिहाजा ये वारिस होने का सबब जो है बातिल हो जाएगा फी हक़िही, खावंद के हक में, खुसूसन इज़ा रज़िया बिही, खास तौर पर जब खावंद खुद इस पर राजी है। तलाक किसने दिया? खावन ने, तो मालूम हो वो खुद अपने हक के बातिल करने पर राजी है भाई। आगे देखिए, वह इन तल्लकहा सलासन भी अमरीहा अवकाल अलहतारी फख्तारत नफसहा अब इख्तलात मिनहू सुम्मा मात वही फिल इद्दति लम तरिस हो। सूरत है मसला यह, खावन ने मरजुल मौत में बीवी को तीन तलाकें दे दी लेकिन खुद बीवी के कहने पर दी हैं, बीवी ने मुतालबा किया मुझे जुदा कर दो, अपने आप से मुझे तलाक दे दो। तो अब जुदाई जो आई है वह औरत की ख्वाहिश पर आई है, औरत के कहने पर आई है, लिहाजा अब दिलों में बदगुमानी नहीं आती। पहले तो बदगुमानी आती थी, खावन तलाक देता था, औरत ने तो मुतालबा नहीं किया लेकिन खावन तलाक दे रहा है, भाई आपने तलाक देनी थी तो जिंदगी में तलाक देते जब आप सेहतमंद थे, अब जब आप मरने वाले हैं औरत आपकी वारिसा बनने वाली है, अब आप मालूम हुआ इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो दिलों में बदगुमानी आती थी, दिलों में लेकिन यहां पर जब औरत खुद मुतालबा कर रही है तलाक का और खावंद इसको मरजुल मौत में तीन तलाकें दे देता है, अब बदगुमानी दिलों में नहीं आती भाई, क्योंकि वह औरत खुद मुतालबा कर रही है। लिहाजा इस सूरत में अगर खावंद तीन तलाकें देता है तलाक बाएं तो औरत वारिसा नहीं बनेगी। या खावंद ने औरत से कहा मरजुल मौत में इख्तारी, तो अपने नफ्स को इख्तियार कर ले, वो औरत जवाब में कहती है इख्तार तो नफ्सी, मैंने अपनी जात को इख्तियार कर लिया, तो औरत ने खुद जुदाई को इख्तियार किया है, इसको तलाक बाइन हो गई, लिहाजा इद्दत के अंदर भी खावंद का इंतकाल हो जाए तो ये वारिसा नहीं बनेगी क्योंकि इसने खुद जुदाई को इख्तियार किया है। या इसी तरह मरजुल मौत के अंदर औरत खावंद के साथ खुला कर लेती है, मैंने आपको बतलाया था खुला यह कि औरत माल के एवज खावन से जुदाई का मुतालबा करती है कि मुझसे खुला कर लो 10 लाख रुपए ले लो, तो याद रखो खावन राजी हो जाएगा तो फौरन उसी वक्त तलाक हो जाएगी और अब उस औरत के जिम्मे वो माल आ गया, वो उसको अदा करना पड़ेगा। और खुला के अंदर तलाक का लफ्ज नहीं होता, अगर औरत कहती है मुझे तलाक दे दो 10 लाख रुपए लेकर, तो इसको फिर तलाक आला एवज कहते हैं, इवज लेकर तलाक देना, तो हुक्म दोनों का एक ही है, इवज लेकर तलाक देगा वो भी तलाक बाइन होगी, खुला करेगी वो भी बाइन होगी, लेकिन बहरहाल नाम अलग अलग हैं, तो खुला के अंदर तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं होता। तो लिहाजा मरजुल मौत में बीवी ने खावन से खुला कर लिया कि इतना माल ले लो और मेरे साथ खुला कर लो, खावन ने कबूल कर लिया, तो इस सूरत में भी इद्दत के अंदर भी खावन का इंतकाल हो जाए तो भी औरत वारिसा नहीं बनेगी क्योंकि उसने खुद जुदाई को इख्तियार किया है। तो कहते हैं वह इन तल्लाकहा सलासम भी अमरीहा, और अगर खावन ने उसको तीन तलाकें दे दी भी अमरीहा उसके हुक्म पर उसके कहने पर, अवकाल अलहख्तारी या खावन ने उससे कहा इख्तारी, फख्तारत नफ्सहा तो औरत ने अपनी जात को इख्तियार कर लिया, अब इख्तलअत मिन्हु या औरत ने खावन से खुला कर लिया, सुम्मा माता वही फिल इद्दती फिर खावन का इंतकाल हुआ इस हाल में कि औरत इद्दत ही में है, लम तरिसु तो यह औरत उसकी वारिसा नहीं होगी, लिअन्नहा रज़ियत भी इब्ताल हक्किहा इसलिए क्योंकि औरत खुद राजी है अपने हक को बातिल करने पर, व ताखीरु लिहक्किहा और वो जो हम इब्ताल को मुअख्खर करते थे वह औरत के हक की वजह से था। खावन तलाक बाइन देता है मरजुल मौत में, तो हमने क्या कहा खावन बीवी को अगर तलाक बाइन दे सेहत की हालत में तो फिर औरत खावन की वारिसा नहीं बनती चाहे इद्दत ही में खावन का इंतकाल क्यों ना हो जाए, लेकिन मरजुल मौत में जब खावन तलाक बाइन दे रहा है, मरजुल मौत में खावन तलाक बाइन दे रहा है हालांकि औरत का हक उसके माल के साथ मुतालिक हो चुका है, तो खावन मालूम हो उसके हक को बातिल करना चाहता है, तो दिलों में यह बदगुमानी आती है, इसलिए शरीयत ने उसके इस इबताल को मुअख्खर कर दिया था इद्दत के आखिर तक कि वो औरत के हक का इबताल नहीं कर सकता, उसको बातिल नहीं कर सकता। तो यहां पर तो औरत खुद जुदाई को इख्तियार कर रही है, जब वो खुद जुदाई को इख्तियार कर रही है तो अब खावंद के इबताल को मुअख्खर नहीं किया जाएगा, वो जैसे ही तलाक देगा या जैसे ही खुला करेगा उस औरत का हक खावंद के माल से बातिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं लिया नहा रजियत भी इब्ताल हकीहा क्योंकि वो खुद अपने हक को बातिल करने पर राजी है, व ताखीर हकीहा और वो जो हमने मुअख्खर किया था खावंद की तरफ से उसके हक को बातिल करना, उसको जो हमने मुअख्खर किया था लि हकीहा वो तो इस औरत के हक की वजह से था, अब तो ये खुद अपने हक को बातिल कर रही है। वह इन कालत दूसरी सूरत बीवी ने खावंद से कहा मुझे तलाक रजई दे दो, मरजुल मौत में बीवी क्या मुतालबा कर रही है मुझे तलाक रजई दे दो, खावन ने तीन तलाकें दे दी और इद्दत के अंदर ही खावन का इंतकाल भी हो गया, कहते हैं यह भी वारिसा बनेगी। भाई ये क्यों वारिसा बनेगी, ये तो खुद तलाक का मुतालबा कर रही थी, कहते हैं भाई ये तलाक रजई का मुतालबा कर रही थी और तलाक रजई के अंदर तो औरत वारिसा बनती है, वारिसा बनती है, ये तलाक रजई का जब मुतालबा कर रही है मालूम है ये अपना हक साकित करने पर राजी नहीं है। भाई कहते हैं वह इन कालत, और अगर बीवी ने कहा तल्लिकनी लिर रजाती कि मुझे तलाक रजई दे दे, फतल्लकहा सलासन, तो खावन ने उसको तीन तलाकें दे दी, वरिसत हु, तो यह औरत भी उसकी वारिसा बनेगी इद्दत के अंदर, लिअन्ना तलाक रजई ला युजील निकाह, इसलिए क्योंकि तलाक रजई जो है वो तो निकाह को खत्म नहीं करती, फलम तकुन बिसुआलिहा राजियतम बिबुतलानी हकीहा, तो लिहाजा यह औरत अपने सवाल की वजह से राजी नहीं है, बिबुतलानी हकीहा, अपने हक के बातिल करने पर, इसने जो तलाक रजई का सवाल किया है, तलाक रजई मांगी है, इससे यह इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता कि यह औरत अपना हक बातिल करने पर राजी है भाई। फलम तकुन बिसुआलिहा राजियतन, तो औरत ने जो तलाक रजई का सवाल किया है, यानी तलाक रजई को जो मांगा है, तलाक रजई मांगने की वजह से राजी नहीं है, बिबुतलानी हकीहा, अपने हक के बातिल होने पर। आगे देखिए, व इन काल लहा फी मरजी मौती ही कुन तु तल्लक तु की सलासन फी से हती वन कजत इद्दत की फसदकत हु सुम अकर लहा बिदैनिन औ औसा लहा बिवसीयतिन फलहल अकल मिन जालिका व मिन अल मीरास इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह। सूरत मसला ये खावन मरजुल मौत में मुबतला है, वो सबके सामने बीवी से कहता है कि तुम्हें तो मैंने सेहत में तीन तलाकें दे दी थी और तुम्हारी इद्दत भी गुजर चुकी थी, और औरत कहती है हां आप ठीक कह रहे हैं, औरत भी मान लेती है, उसकी तस्दीक कर देती है, और फिर उसके बाद उसी मरजुल मौत में खावन जो है उस औरत के लिए वसीयत कर देता है कि मेरे मरने के बाद इसको इतना माल दे देना, या खावंद उसके लिए इकरार कर लेता है कि मैंने किसी जमाने में अपनी इस बीवी से 10 लाख रुपए कर्ज लिए थे, वो इसको अदा कर देना। तो पहले दोनों ने आपस में इत्तेफाक कर लिया, मियां और बीवी ने, कि सेहत में तीन तलाकें भी हो चुकी हैं और इद्दत भी गुजर चुकी है, और फिर उसके बाद उसी मरजुल मौत के अंदर खावंद उस बीवी के लिए वसीयत कर देता है या इकरार कर लेता है। आप जानते हैं वारिस के लिए ना वसीयत जायज है और ना इकरार जायज है। तो आप इस सूरत के अंदर इमाम साहब फरमाते हैं कि देखा जाएगा कि अगर यह औरत वारिसा बनती तो इसको कितना माल मिलता, और यह जो वसीयत की है, यह जो इकरार किया है, यह कितना है। अगर जो वसीयत की है या जो इकरार किया है वो उस माले मीरास के बराबर है या उससे कम है, फिर तो इसकी वसीयत या इकरार को कबूल किया जाएगा। जो वसीयत की है या जो इकरार किया है वो दे देंगे, क्योंकि वो इतना ही बनता है जितना मीरास में माल इसको मिलना था या उससे कम बन रहा है, तो वो दे देंगे। लेकिन अगर ये वसीयत या इकरार उस मीरास से ज्यादा है तो फिर ज्यादा नहीं देंगे, बल्कि वो जो अकल है वो ही देंगे भाई। हासिल कलाम ये इमाम साहब ये फरमाते हैं कि औरत के मीरास में जितना हिस्सा बन रहा है उसको देख लो, और दूसरी तरफ वसीयत और इकरार को देख लो, जो कम बनता है वो इस औरत को दे दिया जाएगा। मीरास काम बन रही है तो वो दे देंगे, और अगर वो वसीयत या इकरार काम है तो वो दे देंगे। वजह ये क्योंकि दरअसल दिलों में बदगुमानी आती है कि शायद ये मियां बीवी ने आपस में गठजोड़ कर लिया है, ये एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, खावन चाहता है मेरी बीवी को ज्यादा माल मिले, खावन चाहता है बीवी को ज्यादा माल मिले मीरास से, और वो वसीयत भी नहीं कर सकता क्योंकि बीवी के लिए वसीयत जायज नहीं, वो तो वारिसा है, नीज उसके लिए इकरार भी जायज नहीं क्योंकि वो वारिसा है भाई। तो अब यूं करते हैं कि हम दोनों आपस में तलाक पर क्या कर लेते हैं, सबके सामने इत्तेफाक कर लेंगे, और जब तलाक और इद्दत के गुजरने पर हम इत्तेफाक कर लेंगे तो फिर वसीयत और इकरार का दरवाजा खुल जाएगा, फिर मैं तुम्हारे लिए वसीयत या इकरार कर दूंगा ज्यादा माल की। तो दिलों में बदगुमानी आती है, मालूम नहीं इन्होंने ऐसा किया है या नहीं, लेकिन दिलों में बदगुमानी आती है। तो शरीयत ने कहा कि इन दोनों में से जो अकल हो वो औरत को दे दो, अकल के अंदर तो बदगुमानी नहीं है भाई। मीरास अगर कम बन रही है तो वो दे दो, और अगर वसीयत या इकरार कम है तो वो दे दो। तो कहते हैं वह इन काल लहाफी मरजी मौती ही, और अगर खावन ने बीवी से कहा अपने मरजुल मौत में कुन तु तल्लक तु की सलासन फी सेहती कि मैंने तुझे तीन तलाकें दी थी अपनी सेहत में, वन कजत इद्दत की और तेरी इद्दत भी गुजर गई थी, फसद दकत हु, तो बीवी ने भी खावन की तस्दीक कर दी कि आप सच कह रहे हैं, ثم اقر لها بدین او اوصى لها بوصيه, پھر خاوند نے اس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا, او اوصى لها بوصيه یا اس کے لیے کوئی وصیت کر دی, فلحل اقل تو اس عورت کے لیے کم تر ہوگا وہ جو کم ہے, من ذالک اس دین یا وصیت میں سے, و من المیراث اور میراث میں سے, دین یا وصیت یا میراث میں سے جو کم ہے وہ اس عورت کو ملے گا. تو کہتے ہیں فلحل اقل تو اس عورت کے لیے کم تر ہوگا, من ذالک و من المیراث اس دین یا وصیت یا میراث میں سے, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک, وقال ابو یوسف و محمد رحمهم اللہ تعالی یجوز اقراره و وصیته. صاحبین فرماتے ہیں خاوند کا اقرار اور وصیت جائز ہے, خاوند کا اقرار یا وصیت جائز ہے جب بیوی نے خاوند کی تصدیق کر دی ہے کہ خاوند اس کو تین طلاقیں بھی دے چکا ہے اور عدت بھی گزر چکی ہے, تو وہ اجنبیہ بن گئی, وہ اجنبیہ بن گئی. جب وہ اجنبیہ بن گئی ہے تو اجنبیہ کے لیے تو وصیت بھی جائز ہے اور اقرار بھی جائز ہے, لہذا اس عورت کو وہی وصیت یا اقرار والا مال دیں گے چاہے جتنا بھی ہوا, چاہے میراث سے کم ہوا چاہے اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوا, یہی وصیت والا مال اس کو ملے گا یا یہی اقرار والا مال اس کو ملے گا بھائی. جبکہ امام صاحب فرماتے تھے جو اقل ہوگا وہ ملے گا, میراث اور اس وصیت اقرار میں سے جو اقل ہے وہ ملے گا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ یہاں یہ عبارت سمجھ لیں, فلحل اقل من ذالک و من المیراث, یاد رکھو یہ من یہ الاقل کا صلہ نہیں ہے, یہ الاقل کا صلہ نہیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف جارہ جس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں یہ اس کا صلہ کہلاتے ہیں. ضرب تو زیدن بالعصا, میں نے زید کی پٹائی کی بالعصا لاٹھی سے, تو یہ بالعصا جار مجرور متعلق ہے ضرب تو کے ساتھ, تو یوں کہیں گے کہ یہ بالعصا یہ جو با جارہ ہے یہ صلہ ہے ضربتو کا, یہ کیا ہے ضربتو کا صلہ ہے. تو جو حرف جر جس فعل یا شبہ فعل سے جڑتا ہے اس کو اس کا صلہ کہتے ہیں. تو آپ نے پڑھا ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں, یا الف لام کے ساتھ ہوگا, یا اضافت کے ساتھ ہوگا, یا مین کے ساتھ. معلوم ہوا یہ مین اس میں تفضیل سے جڑتا ہے تو یہ اس کا صلہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ صلہ. تو اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے, یا الف لام یا اضافت یا مین, اور تین میں سے ایک وقت میں ایک ہی طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں الاقل پر الف لام داخل ہے اور آگے مین بھی آ رہا ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مین شاید الاقل کا صلہ ہے اسی سے جڑ رہا ہے, اس میں تفضیل دو طریقوں سے اکٹھا استعمال ہو رہا ہے الف لام اور مین کے ساتھ. نہیں نہیں, یہاں اس میں تفضیل اقل صرف الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, اور یہ مین بیان کے لیے ہے, یہ اس عقل کو بیان کر رہا ہے. جب مین بیان کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ عموماً یعنی کے ساتھ کرتے ہیں. تو فلحل عقل تو اس عورت کو کم تر ملے گا, من ذالک و من المیراث اس دین یا وصیت یا میراث میں سے, ان میں سے جو کم تر ہوگا وہ عورت کو ملے گا. تو یہ مین کیا ہے؟ یہ اسی العقل کا بیان ہے. کون سا کم تر بھائی, کون سا کم تر ملے گا؟ کہتے ہیں یعنی ان دونوں میں سے جو کم تر ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. من ذالک و من المیراث, اور یہ جو و من المیراث کے ساتھ وو آیا ہے یاد رکھو یہ وو بمانے او کے ہے, وو بمانے او کے ہے. او کا کیا معنی؟ یا, یا. اور عربی زبان میں وو جو ہے وہ عام استعمال ہوتا رہتا ہے او کے معنی میں. تو گویا عبارت یوں ہے, فلحل اقل من ذالک او من المیراث, تو اس عورت کے لیے کم تر ہوگا یعنی اس مال اور میراث میں سے. آگے دیکھیے, وَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ. دوسری صورت, خاوند مرض الموت میں مبتلا ہے, بیوی نے مطالبہ کر دیا مجھے تین طلاقیں دے دو, خاوند نے اس کو تین طلاقیں دے دیں, خاوند نے تین طلاقیں دے دیں, اور آپ نے پڑھا کہ اس صورت میں عورت کو وارثہ نہیں بنتی. اب خاوند نے اس کے لیے وصیت کر دی یا اقرار کر دیا, تو اس صورت میں हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं जब औरत के अपने मुतालबे पर खावन ने तीन तलाकें दी हैं और फिर खावन ने उसके लिए वसीयत या देन का इकरार किया है तो औरत को अकल मिलेगा। वसीयत और देन और मीरास में से जो कमतर होगा वो मिलेगा। एक वक्त में एक चीज होगी ना, या खावन वसीयत करेगा या देन, तो वो वसीयत और मीरास को देखेंगे, जो कमतर हो वो औरत को दे देंगे, या अगर इकरार किया है तो इकरार और मीरास को देखेंगे, जो कमतर होगा वो औरत को मिलेगा। ये हमारे तीनों अइमा इसमें इत्तेफाक करते हैं। पहली सूरत में इख्तिलाफ है साहिबैन का और इमाम साहिब का, इसमें इत्तेफाक है। तो कहते हैं वह इन तल्लका सलासन फी मरज ही भी अमरिहा, और अगर खावन ने बीवी को तीन तलाकें दे दी अपने मरजुल मौत में भी अमरिहा इस औरत के हुक्म पर, सुम अकर्रा लहा बिदैनिन, फिर खावन ने उसके लिए इकरार कर लिया दैन का, औ औसा लहा बि वसीयतिन, या औरत के लिए वसीयत कर दी, फलहल अकल्लु मिन जालिका, तो औरत के लिए कमतर होगा, मिन जालिका व मिन अल मीरासी, मिन जालिका औ मिन अल मीरासी, यहां भी वह बमाने औ के है और यहां भी मीन बयान के लिए है, कमतर होगा। भाई कमतर वो क्या है कमतर, कहते हैं मिन जालिका व मिन अल मीरासी, यानी उसमें से और मीरास में से, उसमें से या मीरास में से जो कमतर होगा वो औरत के लिए होगा। फी कौलिहिम जमीआ, हमारे सब अइमा के कौल के मुताबिक भाई, इल्ला अला कौली जुफर रहमहुल्ला, मगर इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल में, फइन्नलहा जमीआ मा औसा वमा अकर्र बिही, इमाम जुफर फरमाते हैं कि इस औरत को वो सारा माल मिलेगा जिसकी खावन ने इसके लिए वसीयत की है या जिसका खावन ने इसके लिए इकरार किया है। तो कहते हैं इल्ला अला कौली जुफर रहमहुल्ला, मगर इमाम जुफर रहमहुल्ला के कौल पर, फइन्नलहा जमीअ मा औसा व मा अकर्र बिही, इस औरत के लिए वो सारा होगा जो खावन ने उसके लिए वसीयत की है या जिसका उसके लिए करार किया है। लिअन्न अल मीरास लम्मा बतला बिसुआलिहा, इसलिए क्योंकि मीरास जब बातिल हो गई बिसुआलिहा, औरत के सवाल करने की वजह से, औरत के मांगने की वजह से, औरत जब तलाक मांग रही है, जब औरत खुद तलाक मांग रही है मरजुल मौत में, अब तो दिलों में बदगुमानी नहीं आती कि खावंद इसको नुकसान देना चाहता है, ये तो खुद मांग रही है तलाक, तो लिहाजा इस सूरत में औरत वारिसा नहीं बनती। जब औरत वारिसा नहीं बनती तो अब उसके लिए वसीयत भी जायज है और देन का इकरार भी जायज है, वो सारा उसको मिलेगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न अल मीरास लम्मा बतला बिसुआलिहा, इसलिए क्योंकि मीरास जब वो बातिल हो गई औरत के मांगने की वजह से, ज़ाल अल मानिउ मिन सिहतिल इकरारी वल वसीयति, तो वो जो मानिउ था मिन सिहतिल इकरारी वल वसीयति, इकरार और वसीयत के सही होने से, वो चीज जो इकरार और वसीयत के सही होने से मानिउ थी वो चली गई, और वो क्या था, वारिस होना। वारिस जो होता है उसके लिए इकरार भी सही नहीं और उसके लिए वसीयत भी सही नहीं, लेकिन जब औरत ने खुद सवाल किया है तलाक का तो मालूम हुआ अब वो वारिसा नहीं बनेगी। जब वारिसा नहीं बनेगी तो माने चला गया, उस बीवी के लिए वसीयत क्यों जायज नहीं थी, क्योंकि वो वारिसा बन रही थी, लेकिन अब तो माने चला गया, अब तो उसने खुद तलाक मांगी है, जब खुद तलाक मांगी है तो अब ये वारिसा नहीं बनेगी, जब वारिसा नहीं बनेगी तो ये गैर वारिसा हुई, और गैर वारिस के लिए तो वसीयत भी जायज है और इकरार भी जायज है। ये माना है। फिर देख लीजिए तर्जमा, लिअन्नल मीरास लम्मा बतला बिसुआलिहा, इसलिए क्योंकि मीरास जब बातिल हो गई इस औरत के मांगने की वजह से, ज़ाल अल मानिउ मिन सिहतिल इकरारी वल वसीयति, तो वो जो इकरार और वसीयत के सही होने से मानिउ चीज थी वो चली गई, वो खत्म हो गई, यानी वारिस होना खत्म हो गया, अब इकरार भी सही और वसीयत भी सही है भाई। हासिल कलाम ये, यहां दो मसले जिक्र किए। एक सूरत यह थी कि बरसुल मौत में खावन बीवी से कहता है कि मैंने तुझे सेहत में तीन तलाकें दी थीं और तेरी इद्दत भी गुजर गई थी और औरत भी उसकी तस्दीक कर देती है, एक सूरत। दूसरी सूरत कि औरत खुद तलाक मांगती है और खावन उसको तीन तलाकें दे देता है, और फिर दोनों सूरतों में खावन इसके लिए वसीयत करता है या इकरार करता है। खावन क्या करता है, वसीयत करता है या इकरार करता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक दोनों सूरतों में औरत को अकल मिलेगा, वो जो वसीयत या इकरार है उसको भी देख लेंगे और मीरास को भी देख लेंगे, जो अकल होगा औरत को वो मिलेगा दोनों सूरतों में। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं दोनों सूरतों में औरत गैर वारिसा हो गई, जब गैर वारिसा हुई तो उसके लिए वसीयत और इकरार सही, जब वसीयत और इकरार सही तो वो जितना भी हुआ उसको दिया जाएगा। जबकि साहिबैन जो है पहली सूरत में इमाम जुफर के साथ हैं कि जब दोनों ने इत्तेफाक कर लिया कि खावंद ने सेहत में तलाक दी थी और इद्दत भी गुजर चुकी है, तो उस सूरत में साहिबैन इमाम जुफर के साथ हैं कि यहां तो निकाह भी टूट चुका है, इद्दत भी गुजर चुकी है, लिहाजा औरत को पूरी वसीयत या पूरा इकरार जितना खावंद ने किया है वो पूरा दैन दिया जाएगा। जबकि अगर औरत के मांगने पर खावंद ने उसे तीन तलाकें दी हैं तो, और इस सूरत में खावंद ने इकरार या वसीयत की है, तो इस सूरत में इमाम साहिबैन इमाम साहिब के साथ है। किसके साथ हैं कि अकल दिए, इमाम साहब तो फरमाते हैं दोनों सूरतों में अकल देंगे, लेकिन औरत के कहने पर अगर खावंद मरजुल मौत में तीन तलाकें दे देता है या तलाके बाइन दे देता है तो फिर साहिबैन इमाम साहिब के साथ हैं कि अकल दिया जाएगा औरत को। भाई अब हर एक की दलील जिक्र करेंगे, देखिए भाई वजह कौली ही माफिल मस अलतिल उला, साहिबैन के कौल की वजह पहले मसले में, पहले मसले में साहिबैन ने इमाम साहब से इख्तलाफ किया था, इमाम साहब फरमाते थे अकल मिलेगा और साहिबैन क्या फरमाते हैं कि पूरी वसीयत या पूरा दैन मिलेगा जिसका इकरार किया है, तो उसमें साहिबैन की क्या दलील है वो अब जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वजह कौली ही माफिल मस अलतिल उला, साहिबैन के कौल की वजह पहले मसले में यह है कि अन्नहुमा लम्मा तसादका अलत तलाकी, जब दोनों बाहम मुत्तफिक हो गए तलाक पर, वन किजा इल इद्दती और इद्दत के गुजरने पर, सारत अजनबी यतन अनहू, तो वह औरत इस खावन से अजनबिया हो गई, क्योंकि तलाक भी हो चुकी है और इद्दत भी गुजर चुकी है और दोनों ने बाहम एक दूसरे की तस्दीक कर दी, सारत अजनबी यतन अनहू, वह औरत खावन से अजनबिया हो गई, हत्ता जाज अलहू अय्यतजव्वजा उख्तहा, यहां तक कि अब इस खावन के लिए जायज हो गया है कि वो इसकी बहन से भी निकाह कर सकता है, वह अजनबिया बन गई है, खावंद उसकी बहन से भी निकाह कर सकता है, हालांकि दो बहनों को तो एक शख्स निकाह में जमा नहीं कर सकता, उससे तो मना किया गया है, लेकिन यहां बिल इतफाक इमाम साहब भी फरमाते हैं यह शख्स मरजुल मौत में है लेकिन इसकी बहन से निकाह करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की तस्दीक कर दी है कि तीन तलाकें भी हुई थी और इद्दत भी गुजर चुकी है, तो यह औरत अजनबिया बन गई और अजनबिया की बहन से तो निकाह जायज है। तो कहते हैं हत्ता जाज अलहू अय्यतजव्वजा उख्तहा, यहां तक कि खावन के लिए जायज है कि वो इसकी बहन से निकाह कर ले, फन अदमति तोहमतु, तो तोहमत मादूम हो गई, तोहमत क्या हो गई मादूम, बदगुमानी मादूम हो गई, क्या बदगुमानी दिलों में आती थी भाई, दोनों ने इत्तेफाक कर लिया कि तलाक भी हो चुकी इद्दत भी गुजर चुकी और फिर खावन उसके लिए वसीयत या इकरार करता है, तो दिलों में बदगुमानी आती है कि मालूम हुआ खावंद उसको ज्यादा माल देना चाहता है, दोनों ने आपस में मिलकर यह बात तय की कि इस तरह हम करेंगे, वैसे तो मैं तुम्हारे लिए वसीयत या इकरार नहीं कर सकता लेकिन जब तलाक और इद्दत के गुजरने की बात कर देंगे तो फिर मेरे लिए वसीयत और इकरार का रास्ता खुल जाएगा, तो ये दिलों में बदगुमानी आती है। लेकिन साहिबैन फरमाते हैं कि यहां पर बदगुमानी नहीं आएगी, यहां पर बदगुमानी नहीं आएगी क्योंकि वह औरत अजनबिया बन चुकी है, यहां तक के खावंद के लिए उसकी बहन से भी निकाह जायज हो चुका है क्योंकि इद्दत गुजर चुकी है, इद्दत जब इद्दत गुजर चुकी है तो अब दिल में कोई बदगुमानी नहीं आती कि खावंद इसको ज्यादा फायदा देना चाहता है। तो कहते हैं हत्ता जाज अलहू अय्यतजव्वजा उख्तहा, यहां तक कि खावंद के लिए जायज है कि वह उसकी बहन से निकाह कर ले, फन आदमति तोहमतु, तो तोहमत मादूम हो गई, तोहमत क्या हो गई मादूम, अगर तोहमत होती तो बहन से निकाह जायज ना होता भाई, अगर मियां बीवी ने आपस में गठजोड़ किया हो कि हम इस तरह की बात करेंगे कि मैं तुम्हारे लिए वसीयत या इकरार नहीं कर सकता, हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, हम दोनों मिलकर यह बात करेंगे कि मैं तुम्हें तीन तलाकें भी दे चुका हूं और इद्दत भी गुजर चुकी है और फिर मेरे लिए वसीयत और इकरार का दरवाजा खुल जाएगा, अगर यह बदगुमानी दिलों में आती है कि हो सकता है यह झूठ बोल रहे हो तो फिर तो बहन के साथ निकाह जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन बहन के साथ निकाह जायज है, मालूम हुआ यहां बदगुमानी नहीं है, अगर बदगुमानी होती तो बहन से निकाह जायज ना होता, वजह समझ में आ गई। तो कहते हैं फन आदमति तोहमतु, तो तोहमत मादूम हो गई, तोहमत क्या बदगुमानी क्या आती थी, वो इसको ज्यादा देना चाहता है, वसीयत इकरार का रास्ता खोलना चाहता है तो वो बदगुमानी खत्म हो गई। तो कहते हैं फन अदमती तोहमत, तो दो बदगुमानी खत्म हो गई। मेरी किताब में लिखा हुआ है अतोहमत के नीचे आई तोहमत तफजील ज़ौजती अला बाकिल वरासती, आपकी किताब में है जी। तो ये जो बदगुमानी है कि वे बीवी को बाकी वारिसों पर तरजीह दे रहा है, उसको ज्यादा माल देना चाहता है, ये बदगुमानी खत्म हो गई। अगर ऐसा होता तो इसकी बहन से भी निकाह जायज ना होता, लेकिन ये इसकी बहन से निकाह जायज है, मालूम है यहां कोई तोहमत नहीं। अल्लाह तारा के आप देखते नहीं अन्नहु तुकबलु शहादतुहु लहा, कि खावन की गवाही कबूल की जाएगी लहा इस औरत के लिए। वह यजूजु वज़ु ज़कात फीहा, और उसके अंदर जकात रखना भी जायज है, यानी उसको जकात देना भी जायज है। भाई याद रखो, वो अफराद जिनके मफादात मुश्तरका होते हैं जी। वो अफराद जिनके मफादात मुश्तरका होते हैं, एक दूसरे के हक में उनकी गवाही कबूल नहीं की जाती जी। मसलन बाप बेटा है, किसी मसले के अंदर बाप बेटे के हक में गवाही देना चाहता है, नहीं भाई, बाप की गवाही बेटे के हक में कबूल नहीं। या बेटा किसी मसले में बाप के हक में गवाही देना चाहता है, नहीं भाई, बेटा बाप के हक में गवाही नहीं दे सकता। वजह यह कि बाप बेटे के मफादात मुश्तरका होते हैं, ये मिलकर एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे का माल इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर दिलों में बदगुमानी आती है कि बाप को फायदा होगा तो उसमें बेटे का भी फायदा है, इसलिए वो बाप के हक में गवाही दे रहा है, या बाप बेटे के हक में गवाही दे रहा है। तो दिलों में बदगुमानी आती है कि बेटे को माल मिलेगा उस गवाही की वजह से, बेटे का फायदा होगा तो बाप का भी फायदा है भाई, तो ये गोया अपने फायदे के लिए गवाही दे रहा है। लिहाजा इसलिए जिन लोगों के मफादात मुश्तरका हों, एक दूसरे के हक में गवाही कबूल नहीं की जाती। हां, एक दूसरे के खिलाफ कबूल की जाएगी, बेटा बाप के खिलाफ गवाही देने आता है, ये गवाही कबूल की जाएगी। तो जिन लोगों के मफादात मुश्तरका हों, एक दूसरे के हक में उनकी गवाही काबिले कबूल नहीं। इसी तरह मियां बीवी भी हैं, मियां बीवी के मफादात मुश्तरका हैं भाई, ये दोनों एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे का माल इस्तेमाल करते हैं भाई। लिहाजा यहां पर भी बीवी खावन के हक में गवाही कहीं नहीं दे सकती, और खावन बीवी के हक में गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि ये तो शायद अपने फायदे के लिए गवाही दे रहा है, क्योंकि खावन का फायदा होगा तो बीवी का फायदा होगा, और बीवी का फायदा होगा तो खावन का फायदा होगा भाई। लेकिन यहां खावन की गवाही इस औरत के हक में कबूल है। ये जो औरत है खावन के मरजुल मौत में, दोनों ने इत्तेफाक कर लिया, खावन कहता है मैंने तुझे सेहत में तीन तलाकें दी थी और इद्दत भी गुजर गई थी, तो इसके अंदर साहिबैन फरमाते हैं यहां बदगुमानी दिलों में नहीं आती, चुनाचे इसीलिए खावन की गवाही भी इस औरत के हक में कबूल है। इमाम साहब भी यही फरमाते हैं कि जब दोनों ने इत्तेफाक कर लिया कि तलाक भी हो गई है, इद्दत भी गुजर गई है, अब किसी वजह से काजी के पास जाकर खावन को गवाही देनी पड़ी इस औरत के हक में, तो इमाम साहब भी फरमाते हैं गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि तीन तलाकें भी हो चुकी और इद्दत भी गुजर चुकी, अब तो निकाह बिल्कुल है ही नहीं, ये अजनबी हैं, और अजनबिया के लिए तो गवाही कबूल की जाएगी भाई। इसी तरह मियां बीवी एक दूसरे को जकात नहीं दे सकते भाई, जिन लोगों के मफादात मुश्तरका हों वो एक दूसरे को जकात नहीं दे सकते। बाप अपनी जकात बेटे को नहीं दे सकता, बेटा अपनी जकात बाप को नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है कि ये तो गोया अपने आप ही को जकात दे रहा है, बाप बेटे को देगा तो बेटे का माल तो बाप भी इस्तेमाल करता है तो ये भी उसको इस्तेमाल करेगा। इसी तरह मियां बीवी भी एक दूसरे को जकात नहीं दे सकते, क्योंकि मियां बीवी के मफादात मुश्तरका हैं भाई, तो ये तो इसी तरह होगा जैसे अपने आप को ही जकात दे रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर माल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर इमाम साहिब भी फरमाते हैं इस औरत को यह खावन जकात दे सकता है, मालूम हुआ निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है, किसी किस्म की बदगुमानी नहीं आती। तो जब निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है तो खावन इस औरत की बहन से भी निकाह कर सकता है, खावन इस औरत को जकात भी दे सकता है, और खावन इसके हक में गवाही भी दे सकता है। ये सब चीजें दलालत कर रही हैं कि औरत अजनबिया हो चुकी है, जब अजनबिया हो गई है तो खावन इसके लिए जो भी वसीयत करे या जो भी इकरार करे वो सारा इस औरत को मिलेगा, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं नहीं, अकल मिलेगा। क्या मिलेगा? अकल। तो कहते हैं अल्लाह तारा के आप देखते नहीं अन्नहु तुकबलु शहादतुहु लहा, के इस औरत के हक में इस खावन की गवाही कबूल की जाएगी। व यजूजु वज़ु ज़कात फीहा, और जायज है जकात का रखना फीहा इस औरत में। वज़ु ज़कात का माना है जकात रखना, मुराद है जकात देना। क्या मुराद है? देना। यानी यजूज वस जकात फीहा, खावंद का इस औरत को जकात देना भी जायज है। अगर ये इसकी बीवी होती किसी भी एतबार से तो फिर तो जकात देना जायज ना होता भाई। बिखिलाफ इल मसअलति सानियति, बखिलाफ मसला सानिया के दूसरे मसले में साहिबैन ने इमाम साहब की ताईद की थी। दूसरा मसला कौन सा था? कि औरत के मांगने पर खावंद ने तीन तलाकें दी हैं और फिर इद्दत के अंदर ही खावंद ने उसके लिए वसीयत कर दी है या इकरार कर दिया है, तो यहां साहिबैन भी फरमाते हैं कि औरत को अकल मिलेगा। अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं, बेखिलाफ इल मसअलति सानियती, बखिलाफ दूसरे मसला के, लिअन्न अल इद्दत बाकियतुन, क्योंकि यहां इद्दत बाकी है। यहां क्या बाकी है? इद्दत बाकी है। याद रखो यह इद्दत सबब तोहमत है, क्योंकि इद्दत में हमने बता दिया निकाह के असरात बाकी रहते हैं और यह निकाह ही तो सबब था किस चीज का, कि उसके लिए इकरार भी सही नहीं था और उसके लिए वसीयत भी सही नहीं थी, तो यहां तोहमत का सबब मौजूद है। यह इद्दत यह सबब तोहमत है, इसकी वजह से दिलों में बदगुमानी आती है भाई। पिछले मसले में तो खावन ने कहा था मैंने तुझे सेहत में तीन तलाकें भी दी थी और फिर तेरी इद्दत भी गुजर गई थी और औरत ने तस्दीक कर दी, तो वहां पर तो इद्दत गुजर चुकी है, जबकि इस मसले के अंदर खावन ने औरत के कहने पर उसको मरजुल मौत में तीन तलाकें दी हैं और फिर अभी इद्दत चल रही है कि इसी दौरान खावन ने उसके लिए वसीयत या इकरार कर लिया। तो साहिबैन फरमाते हैं चूंकि यहां इद्दत मौजूद है और इद्दत सबब तोहमत है, इसकी वजह से दिलों में बदगुमानी आती है, लिहाजा इस तोहमत की वजह से अब औरत को अकल मिलेगा। इद्दत किस तरह सबब तोहमत है, देखो इस बात को अच्छी तरह समझ लें भाई। देखिए कोई शख्स दूसरे शख्स का वारिस बनता है, वहां या तो कोई सबब पाया जाएगा वारिस होने का या करीबी रिश्तेदारी होगी, बाप बेटा वगैरह ये सब क्या है, एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं, तो या तो करीबी रिश्तेदारी होगी या कोई सबब पाया जाएगा जिसकी वजह से एक शख्स दूसरे का वारिस बनता है। जैसे निकाह है, खावन बीवी का वारिस बनता है और बीवी खावन का वारिस बनती है, चाहे बिल्कुल अलग अलग खानदानों से है दोनों का ताल्लुक, तो देखो कोई रिश्तेदारी भी नहीं है फिर भी एक दूसरे के वारिस बनते हैं, किसकी वजह से? इस निकाह की वजह से। तो निकाह भी सबब है वरासत का, तो निकाह भी वरासत का सबब हुआ और करीबी रिश्तेदारी भी वरासत का सबब है। और अपने वारिस के लिए तो ना वसीयत जायज है और ना इकरार जायज है। मालूम हुआ जब तक निकाह और कराबत मौजूद है तो ना वसीयत सही है और ना इकरार सही है। तो वसीयत और इकरार के सही न होने की वजह क्या थी? निकाह और कराबत। फिर दोहराएं, कोई शख्स दूसरे शख्स के लिए वसीयत या इकरार नहीं कर सकता, किस सूरत में? जब उसके साथ उसका निकाह हो या उसका वो करीबी रिश्तेदार हो जिसने वारिस बनना है। तो निकाह और करीबी रिश्तेदार होने की वजह से हुक्म लगा दिया जाता है कि ये उसके लिए वसीयत भी नहीं कर सकता और इकरार भी नहीं कर सकता। तो शरीयत ने वारिस के लिए इकरार या वसीयत से मना किया क्योंकि दिलों में बदगुमानी आती है। मालूम हुआ वारिस के लिए वसीयत करेगा तो इसमें तोहमत है, इसमें तोहमत है भाई। लेकिन तोहमत तो एक अमरे बातिनी है भाई, तोहमत तो क्या है? एक अमरे बातिनी है भाई, दिल की बात है कि पता नहीं ये शख्स बदनीयती कर रहा है या बदनीयती नहीं कर रहा। तो वारिस के लिए वसीयत भी जायज नहीं और इकरार भी जायज नहीं, और इल्लत क्या है? तोहमत। लेकिन तोहमत तो एक अमरे बातिनी है, तोहमत का तो पता नहीं चल सकता, ये तो दिल की बात है कि मालूम नहीं वो बदनीयती कर रहा है या वाकई इसने किसी जमाने में इस वारिस से कोई माल लिया था जो इसके जिम्मे बाकी है। तो लिहाजा जब हुक्म की इल्लत पर इंसान मुत्तले न हो सके तो फिर हुक्म का मदार उसकी दलील पर हो जाता है। किस पर? उसकी दलील, ये यूं कहें उसके सबब पर हुक्म का मदार हो जाता है। और सबब क्या है यहां पर? निकाह और करीबी रिश्तेदारी, क्योंकि वारिस क्यों बनता है? या निकाह की वजह से या करीबी रिश्तेदार होने की वजह से। तो लिहाजा निकाह और करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो बस यूं समझो तोहमत मौजूद है। निकाह या करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो तोहमत मौजूद है, तो क्योंकि निकाह और करीबी रिश्तेदारी ये दलील तोहमत हैं, इनकी वजह से बदगुमानी आती है। ये हैं तो इनकी वजह से ये वारिस भी बन रहे हैं, जब वारिस बन रहे हैं अल्लाह ने इनका हक मुकर्रर किया हुआ है तो इनको तो माल मिलना ही मिलना है, फिर भी इनके लिए मजीद वसीयत कर रहा है या इकरार कर रहा है, मालूम हो ये बदनीयती कर रहा है, दिलों में बदगुमानी आती है। तो लिहाजा तोहमत का तो पता नहीं चल सकता, लेकिन दलील तोहमत क्या है? निकाह या करीबी रिश्तेदारी। जब निकाह या करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो यह दलील तोहमत है, और जब दलील तोहमत है मालूम हो तोहमत मौजूद है। तोहमत का तो पता नहीं चल सकता, लेकिन दलील तोहमत तो है ना, निकाह या करीबी रिश्तेदारी तो है, तो जब दलील तोहमत मौजूद है यूं समझेंगे तोहमत मौजूद है, लिहाजा इकरार भी जायज नहीं और वसीयत भी जायज नहीं। ये इसी तरह है जैसे सफर, सफर के अंदर शरीयत ने आसानी कर दी है कि अगर कोई शख्स सफर के अंदर रोजा नहीं रख सकता तो न रखे, बाद में उसको कजा कर ले। और इसी तरह सफर के अंदर शरीयत ने आसानी कर दी कि चार रकात नमाज के बजाय दो रकात नमाज पढ़ ले भाई, कसर कर ले। और ये शरीयत ने यह आसानी क्यों दी? क्योंकि सफर में मशक्कत होती है, तो ये जो शरीयत ने आसानी दी है इसकी इल्लत मशक्कत है भाई। लेकिन मशक्कत तो एक अमरे बात नहीं है, मशक्कत का तो पता नहीं चल सकता कि किसी शख्स को मशक्कत हुई है या मशक्कत और तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि बाज लोगों को अल्लाह ने बड़ा मजबूत जिस्म दिया होता है, वो कई कई दिन भी सफर कर लें उनको मशक्कत का एहसास ही नहीं होता, और बाज लोगों का बदन बड़ा कमजोर होता है, वो थोड़ा सा भी सफर कर लें तो उनको बड़ी मशक्कत हो जाती है। तो लिहाजा ये जो शरीयत ने आसानी वाला हुक्म दिया इसका सबब और इल्लत क्या है? मशक्कत है, लेकिन मशक्कत का पता नहीं चल सकता। जब मशक्कत का पता नहीं चल सकता तो मशक्कत की जो दलील है या मशक्कत का जो सबब है उसी पर हुक्म का मदार कर दिया। और मशक्कत की दलील क्या है? सफर। मशक्कत का सबब क्या है? सफर। तो जब तीन दिन का सफर मौजूद है तो यूं समझो मशक्कत मौजूद है, क्योंकि दलील मशक्कत मौजूद है। तीन दिन का सफर क्या है? दलील मशक्कत। जब दलील मशक्कत मौजूद है तो फिर मशक्कत का एतबार साकित हुआ, उसको देखने की जरूरत नहीं, बस दलील मशक्कत मौजूद है तो हुक्म आ जाएगा कि आप रोजे बाद में रख सकते हैं और आप चार रकात के बजाय दो रकात पढ़ सकते हैं। तो जब भी हुक्म की इल्लत पर मुत्तले होना दुश्वार हो जाए तो हुक्म का मदार सबब पर हो जाता है, या यूं कह हुक्म का मदार दलील तोहमत पर हो जाता है। इसी तरह यहां पर शरीयत ने मना किया है कि मोरिस जो है वारिस के लिए इकरार या वसीयत नहीं कर सकता, और इसकी इल्लत क्या है? तोहमत है, लेकिन तोहमत तो एक अमरे बात नहीं है, उसका तो पता नहीं चल सकता, लिहाजा इस हुक्म का मदार जो है दलील तोहमत पर हो जाएगा। और दलील तोहमत क्या है? निकाह या करीबी रिश्तेदारी। निकाह की वजह से वारिस बन रहा है या करीबी रिश्तेदारी की वजह से वारिस बन रहा है, तो मालूम हुआ यह निकाह और ये करीबी रिश्तेदारी ये दलील तोहमत है भाई। जब दलील तोहमत मौजूद है, निकाह या करीबी रिश्तेदारी मौजूद है, तो मालूम हो तोहमत मौजूद है, जब तोहमत मौजूद है तो फिर इकरार भी जायज नहीं और वसीयत भी जायज नहीं। मालूम हुआ निकाह जो है वो सबब तोहमत है, वो दलील तोहमत है। बात समझ में आ गई। और यहां खावन ने बीवी के अपने मुतालबे पर मरजुल मौत में तीन तलाकें दी हैं और इद्दत के अंदर फिर उसके लिए इकरार या वसीयत कर रहा है, और इद्दत के अंदर तो आप जानते हैं कि निकाह के बहुत से अहकाम बाकी होते हैं। इद्दत के अंदर जो है नफका भी खावन के जिम्मे होता है, रिहाइश भी खावन के जिम्मे होती है। इद्दत के दौरान औरत आगे निकाह भी नहीं कर सकती, इद्दत के दौरान खावन उसे घर से निकलने से भी रोक सकता है, इद्दत के दौरान अगर वो इस इद्दत में अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे का नसब भी खावन से साबित हो जाएगा। हालांकि ये सब तो बीवियों के अहकाम हैं, ये सब तो निकाह के अहकाम हैं भाई। तो मालूम हुआ इद्दत के अंदर भी बाज एतबार से निकाह मौजूद है, और निकाह तो क्या था? दलील तोहमत था। क्या था? दलील तोहमत था। दलील तोहमत निकाह मौजूद है तो गोया तोहमत मौजूद है। तो यहां पर भी इद्दत के अंदर बाज एतबार से निकाह मौजूद है, यानी दलील तोहमत मौजूद है। जब दलील तोहमत है तो गोया तोहमत मौजूद है, तो इस तोहमत की वजह से अब बीवी को अकल देंगे मीरास में से, और ये जो खावन ने उसके लिए इकरार या वसीयत की है इसलिए क्योंकि तोहमत जो है वो ज्यादा माल देने की सूरत में है। अगर खावन जो इकरार या वसीयत कर रहा है वो मीरास से ज्यादा माल की कर रहा है तो उस सूरत में तोहमत है। अगर मीरास के बकदर वो वसीयत या इकरार करता है या उससे कम करता है तो उसमें तोहमत मौजूद नहीं है। तो लिहाजा मालूम हुआ तोहमत जो है ज्यादा माल की सूरत में है तो उस ज्यादती को लग़्व करार दिया जाएगा, और अगर वसीयत या इकरार मीरास के बराबर है या उससे कम है तो जो अकल होगा वो औरत को दिया जाएगा। देखिए साहिब हिदायत इसको और बेहतर अल्फाज में बयान फरमाएंगे, कहते हैं बिखिलाफ इल मसअलति सानियती, बखिलाफ दूसरे मसले के। मसला जहन में है कि औरत ने मरजुल मौत में तीन तलाक का मुतालबा किया और खावन ने तीन तलाकें दे दी और फिर उसके बाद खावन ने वसीयत या इकरार किया है। तो कहते हैं बिखिलाफ इल मसअलति सानियती, बखिलाफ दूसरे मसला के लिए, अन्नल इद्दत बाकियत, क्योंकि इद्दत यहां बाकी है भाई, इद्दत यहां बाकी है। वही सबब उत्तोहमती, और यही तोहमत का सबब है। इद्दत किस तरह तोहमत का सबब है, मैंने बतला दिया कि इद्दत के अंदर निकाह के असरात बाकी होते हैं, निकाह के असरात बाकी होते हैं, और शरीयत ने मना किया है कि निकाह और करीबी कराबत हो तो वहां आप वसीयत भी नहीं कर सकते और इकरार भी नहीं कर सकते, और यहां इद्दत बाकी है और इद्दत के अंदर खावंद उसके लिए वसीयत या इकरार कर रहा है, और इद्दत में तो क्या है, बाज एतबार से निकाह मौजूद है, गोया बाज एतबार से निकाह मौजूद है और खावंद उसके लिए क्या कर रहा है, वसीयत या इकरार कर रहा है, तो तोहमत मौजूद है यहां पर। अगर खावंद ने इसके लिए वसीयत करनी ही थी तो इद्दत के बाद वसीयत करता, लेकिन खावंद ने इद्दत के अंदर वसीयत की है तो यह इद्दत क्या है, दलीले तोहमत है भाई। बात समझ में आ गई, और ये उसके लिए वसीयत और इकरार कर रहा है तो दिलों में बदगुमानी आती है, मालूम है ये इसको फायदा पहुंचाना चाहता है। बात भी समझ में आई कि नहीं? तो कहते हैं लिअन्न अल-इद्दत बाकियतुन, क्योंकि इद्दत बाकी है और वो वसीयत या इकरार कर रहा है, वही सबब उत्तोहमती, और ये तोहमत का सबब है, यह इद्दत क्या है, तोहमत का सबब है, क्योंकि निकाह के असरात बाकी हैं। वल हुक्म युदारु अला दलील तोहमती, और हुक्म का मदार जो है वो तोहमत की दलील पर होगा, हुक्म का दारो मदार तोहमत की दलील पर होगा, तोहमत आ रही है, तोहमत की दलील मौजूद है, लिहाजा जो अकल होगा वो औरत को दे देंगे उस दैन या इकरार में से, या जो माल मीरास है उनमें से जो अकल है वो दे देंगे, क्योंकि अकल के अंदर तो बदगुमानी नहीं आती भाई। दलील समझ में आ गई, देखिए कहते हैं लिअन्नल इद्दत बाकियतुन, क्योंकि इद्दत बाकी है, वही सबब तोहमती, और इद्दत जो है यह तोहमत का सबब है। वल हुक्म युदारु अला दलील तोहमती, और इस हुक्म का दारो मदार जो है तोहमत की दलील पर है, कौन सा हुक्म, कि इकरार और वसीयत सही नहीं, इकरार और वसीयत के सही ना होने के हुक्म का मदार दलील तोहमत पर है। वलिहादा युदारु अला निकाह वल कराबती, और इसीलिए इसका मदार जो है निकाह और कराबत पर होगा, निकाह और कराबत है तो तोहमत मौजूद है, जब तोहमत है तो वसीयत और इकरार सही नहीं, और यहां पर भी इद्दत मौजूद है और इद्दत के अंदर भी निकाह के असरात होते हैं, तो लिहाजा यहां पर भी दलील तोहमत मौजूद है, लिहाजा इस वजह से आप वो जो अकल है वो औरत को देंगे, अगर वो इकरार या वसीयत मीरास से जायद हुआ तो वो जायद नहीं देंगे भाई। तो कहते हैं वला इद्दत फिल मसअलतिल उला, जबकि पहले मसले में तो इद्दत नहीं थी, यहां तो दलील तोहमत मौजूद है, सबब तोहमत यानी इद्दत मौजूद है, लेकिन पिछले मसले में जब दोनों ने मिलकर इत्तेफाक किया था कि खावन कहते हैं मैंने तुम्हें सेहत में तीन तलाकें भी दे दी थी और तुम्हारी इद्दत भी गुजर गई थी, वहां पर तो इद्दत बाकी नहीं, तो इसलिए साहिबैन ने उस मसले के अंदर कहा कि औरत को वसीयत या इकरार ही दे देंगे जितना भी हुआ, क्योंकि वहां सबब तोहमत यानी इद्दत मौजूद नहीं है, वह औरत अजनबिया बन चुकी है। तो कहते हैं वला इद्दत फिल मसअलतिल उला, और पहले मसले में इद्दत नहीं थी। वली अबी हनीफत रहमहुल्लाह तआला फिल मसअलतैनी, अब इमाम साहब की दलील आ गई, और इमाम साहब के नजदीक दोनों सूरतों में, दोनों मसलों में बीवी को अकल देंगे, वसीयत इकरार और मीरास में से जो अकल होगा वो मिलेगा, अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। वली अबी हनीफत रहमहुल्लाह फिल मसअलतैनी, और इमाम साहब की दलील दोनों मसलों में वो ये है कि अन्न तोहमत कायमुन, के तोहमत कायम है, तोहमत मौजूद है, लिअन्न अल-मरअत कद तख्तारु तलाका जी, अब वजह जिक्र करेंगे, दोनों मसलों में तोहमत है, किस तरह, कि खावंद मरजुल मौत में बीवी को कहता है मैंने तुझे सेहत में तलाक दी थी और फिर तेरी इद्दत भी गुजर गई थी और फिर बाद में इसी मरजुल मौत में खावंद उसके लिए इकरार या वसीयत कर रहा है, तो दिलों में बदगुमानी आती है कि हो सकता है दोनों ने आपस में इत्तेफाक कर लिया हो कि मैं इस तरह कहूंगा ताकि मेरे लिए वसीयत और इकरार का दरवाजा खुल जाए। और इसी तरह दूसरे मसले के अंदर मरजुल मौत के अंदर औरत तलाक का मुतालबा कर रही है तो दिलों में बदगुमानी आती है कि यहां पर भी शायद इसलिए औरत मुतालबा कर रही है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, औरत इसलिए मुतालबा कर रही है कि खावंद मुझे तलाकें दे दे और फिर खावंद के लिए वसीयत या इकरार का रास्ता खुल जाएगा। भाई तो इमाम साहब फरमाते हैं दोनों मसलों में कि अन्ना तोहमत कायमत, उनके तोहमत मौजूद है, अन्नल मरअ कद तख्तार अत्तलाक, इसलिए क्योंकि औरत कभी कभार तलाक को इख्तियार कर लेती है अपनी रजामंदी से, लियनफतह बाबुल इकरार वल वसीयत अलैहा, ताकि उस पर इकरार और वसीयत का दरवाजा खुल जाए, फयजीद हक्कुहा, तो उसका हक बढ़ जाएगा। ये औरत ने जो खुद मुतालबा किया है वो इसलिए राजी हुई है तलाक पर ताकि इकरार और वसीयत का दरवाजा खुल जाए। और दूसरे मसले में भी वज़ौजान कद यतवाज़ान अलल इकरार बिल फुरक़ति वन्क़िज़ाइल इद्दती, वज़ौजान कद यतवाज़ान, और मियां बीवी कभी कभार इत्तेफाक कर लेते हैं, यतवाज़ान बाहम इत्तेफाक कर लेना, वज़ौजान कद यतवाज़ान, और मियां बीवी कभी बाहम इत्तेफाक कर लेते हैं, अलल इकरार बिल फुरक़ति वन्क़िज़ाइल इद्दती, जुदाई और इद्दत के गुजरने के इकरार पर दोनों बाहम क्या कर लेते हैं, इत्तेफाक कर लेते हैं। तो कहते हैं वह ज़ौजान कद यतवाज़ानी, और कभी कभार मियां बीवी बाहम इत्तेफाक कर लेते हैं, अलल इकरार इस इकरार पर, इस इकरार पर इत्तेफाक कर लेते हैं, क्या इकरार, बिल फुरक़ति वन्क़िज़ाइल इद्दती, जुदाई और इद्दत के गुजरने पर, जुदाई और इद्दत के गुजरने के इकरार पर दोनों बाहम इत्तेफाक कर लेते हैं। लिया बर्रा हज़ौजु बिमाली ही, लिया बर्रा बा के फतहा के साथ भी सही, और लिया बिर्रा, बर्रा या बिर्रो के माने हैं हुस्ने सुलूक करना, अच्छा सुलूक करना, लिया बर्रा हज़ौजु, ताकि खावन उसके साथ हुस्ने सुलूक करे यानी अच्छा सुलूक करे, बिमाली ही अपने माल के साथ, ज्यादतन अला मीरासिहा उसकी मीरास पर बढ़ाते हुए, दोनों आपस में इत्तेफाक कर लेते हैं कि तलाक भी दे दी है और जुदाई भी हो गई है, ताकि खावंद उसके साथ नेकी कर सके अपने माल के जरिए, यानी उसको उसके हिस्से से ज्यादा दे दे। भाई यह माना है लिया बर रहा ज़ौजु बिमाल ही, ताकि खावंद उसके साथ अच्छा सुलूक करे अपने माल के जरिए, ज्यादतन अला मीरासिहा उसकी मीरास पर बढ़ाकर, वहां दही तोहमतु फी ज्यादती, और यह बदगुमानी सिर्फ ज्यादती की सूरत में है, अगर वो मीरास से ज्यादा की वसीयत या इकरार करे फिर सिर्फ उस वक्त ये बदगुमानी आती है जी। और बराबर या कम की सूरत में ये बदगुमानी नहीं आती। तो कहते हैं वहाद ही तोहमतु फी ज्यादती, और ज्यादा की सूरत में ये बदगुमानी है, फरादद ना हा, तो हमने इस ज्यादती को रद्द कर दिया, वला तोहमत फी कदरिल मीरासी, और मीरास के बकदर मकदार में तो कोई तोहमत नहीं, औरत को मिलना भी 10 लाख था और खावन वसीयत भी कितने की कर रहा है, 10 लाख ही, तो इसमें तो कोई बदगुमानी नहीं। तो कहते हैं वला तोहमत फी कदरिल मीरासी, और मीरास की मकदार के अंदर तो कोई बदगुमानी नहीं है, फसहहनाहु, तो उसको हमने सही करार दिया। जब मीरास के बकदर वसीयत या इकरार सही है तो मीरास से कम इकरार बतरीके औला सही होगा। भाई तो कहते हैं फसहहनाहु, तो मीरास की बकदर को हमने सही करार दे दिया, वला मुआज़ात आदतन फी हक ज़कात व तसव्वुज व शहादती, साहिबैन के कौल का जवाब दे रहे हैं। साहिबैन ने क्या जिक्र किया था, पहली सूरत में जब दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि खावन ने उसको सेहत में तलाकें दी थी और इद्दत भी गुजर चुकी है, तो साहिबैन फरमाते थे ये अजनबिया बन गई है, हत्ता कि इसकी बहन से भी निकाह जायज है, खावंद इसके हक में गवाही भी दे सकता है और नीज खावंद इसे जकात भी दे सकता है। ये सब चीजें बता रही हैं कि वो अजनबिया बन चुकी है, जब अजनबिया बन चुकी है तो इकरार और वसीयत सही है, उसको इकरार और वसीयत देंगे जितना भी माल हो। भाई तो उसका आप जवाब दे रहे हैं कि भाई ये जो मसले आपने जिक्र किए इनके हक में तोहमत नहीं है, इसलिए ये सही है, ये सही है। माल के सिलसिले में बदगुमानी आती है और बीवी की बहन से निकाह में ये बदगुमानी नहीं आती, ये बदगुमानी नहीं आती कि दोनों ने क्या कर लिया होगा, खावंद उसकी बहन से निकाह करना चाहता है तो दोनों ने इत्तेफाक कर लिया कि मैं इस तरह कहूंगा कि मैंने तुम्हें सेहत में 3 तलाकें दी थी और इद्दत भी गुजर गई थी तो मेरे लिए तुम्हारी बहन से निकाह का रास्ता खुल जाएगा। इस पर तो बाहम इत्तेफाक नहीं करेंगे, माल के सिलसिले में तो इत्तेफाक करेंगे कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं और इद्दत के गुजरने का भी हम इकरार कर लेते हैं, फिर मेरे लिए रास्ता खुल जाएगा, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा माल की वसीयत भी कर सकूंगा और इकरार भी कर सकूंगा। तो वसीयत और इकरार के सिलसिले में तो यह बदगुमानी दिलों में आती है, लेकिन बहन से निकाह के बारे में दोनों ने इत्तेफाक कर लिया हो 3 तलाकों का और इद्दत के गुजरने का, यहां बदगुमानी नहीं आती। इसी तरह गवाही देने के सिलसिले में भी बदगुमानी दिलों में नहीं आती कि मैं तुम्हारे हक में गवाही नहीं, वैसे तो नहीं दे सकता, हम यूं कर लेते हैं कि 3 तलाकों का भी इकरार कर लेते हैं और इद्दत के गुजरने का भी इकरार कर लेते हैं तो फिर मैं तुम्हारे हक में गवाही दे सकूंगा। तो यहां भी बदगुमानी नहीं, इस तरह तो कोई भी इत्तेफाक नहीं करता भाई। और इसी तरह जकात के हक में भी दिलों में बदगुमानी नहीं आती कि इस तरह हम दोनों आपस में इकरार कर लेंगे कि मैं तुम्हें तलाकें भी दे चुका हूं और इद्दत भी गुजर गई है, फिर मेरे लिए तुम्हें जकात देना जायज हो जाएगा। तो इस तरह तो कोई भी इत्तेफाक नहीं करता। तो इकरार और वसीयत के सिलसिले में तो दिलों में बदगुमानी आती है, ये बहन से निकाह है या बीवी के हक में गवाही देना है या बीवी को जकात देना जायज हो जाए, इस सिलसिले में तो कोई बदगुमानी दिलों में नहीं आती। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला मुआज़ात आदतन फी हक ज़कती व तज़व्वुजी व शहादती, और बाहमी इत्तेफाक नहीं होता आदतन आम तौर पर फी हक ज़कती ज़कात के हक में व तज़व्वुजी और बहन से निकाह के हक में व शहादती और बीवी के हक में गवाही, इसके सिलसिले में तो अमूमन आदतन जो है बाहम इत्तेफाक नहीं किया जाता। फला तोहमत फी हक हादिहिल अहकामी, लिहाजा इन अहकाम के हक में तो कोई तोहमत नहीं है, इन अहकाम के हक में कोई तोहमत नहीं, लेकिन वसीयत और इकरार के मामले में बदगुमानी दिलों में आती है। आगे सबक देखिए भाई। قال ومن كان محصورا او في صف القتال فطلق امراته ثلاثا لم ترثه وان كان قد بارز رجلا او قدم ليقتل في قصاص او رجم ورثت ان مات في ذلك الوجه او قتل। भाई अब साहिब हिदाया कुछ और मसाइल जिक्र फरमाएंगे, जाब्ता उनका समझ लें। जाब्ता याद रखो, वो चीज जिसमें हलाकत गालिब हो, जिसमें हलाक होना गालिब हो, वो मरजुल मौत के दर्जे में है, वो मरजुल मौत के दर्जे में है। और जिस चीज के अंदर सलामती गालिब हो वो सेहत के दर्जे में है। लिहाजा एक शख्स किले के अंदर बंद है, दुश्मन ने किले का घेराव कर लिया। अब ये शख्स किले के अंदर बंद है और जब किले के अंदर इंसान हो तो सलामती गालिब होती है, तो यह सेहत के दर्जे में है। लिहाजा ये शख्स अगर अपनी बीवी को तलाक बाइन देता है तो यहां सलामती गालिब है, यह मरजुल मौत के दर्जे में नहीं है, लिहाजा बीवी का हक इसके माल के साथ मुताल्लिक नहीं। जब बीवी का हक इसके माल के साथ मुताल्लिक नहीं है तो यह तलाक बाइन देगा तो वो निकाह फौरन टूट गया और अब इद्दत के अंदर भी खावंद का इंतकाल हो जाए तो वह वारिसा नहीं बनेगी। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर एक शख्स जो है मैदान जंग के अंदर मुकाबले के लिए अकेला उतरता है, कदीम जमाने में जंगें यूं होती थीं कि दोनों फौजें आमने सामने आकर पड़ाव डाल लेती, फिर हर रोज जो है कुछ लोग लड़ने के लिए निकलते, सफें बनाते और फिर सुबह से शाम तक लड़ाई रहती और फिर शाम को लड़ाई रुक जाती और लोग अपने अपने जख्मियों को संभालते भाई और मरने वालों को संभालते। और जब लड़ाई शुरू होती, लड़ाई के आगाज में, पहले दिन लड़ाई के आगाज में चंद बहादुर दुश्मन की तरफ से निकलते और इधर से भी चंद बहादुर निकलते और फिर उनका आपस में मुकाबला होता था, जीतने वाला दूसरे को वहीं पर कत्ल कर देता था, दोनों तरफ सफें बनी हुई हैं और दरमियान में दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं भाई, तो इसके अंदर देखो इसके अंदर हलाकत गालिब है। ये जो तलवार से मुकाबला कर रहा है एक शख्स दूसरे शख्स से, इसमें हलाकत गालिब है क्योंकि एक ने तो मरना है हर हाल में और दूसरा भी अमूमन जख्मी हो जाएगा भाई। तो ये अगर तलवार के मुकाबले के अंदर एक शख्स निकला है और फिर ये अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देता है तो ये तो इसने ऐसे मौके पर बीवी को तीन तलाकें दी हैं जिसमें हलाकत गालिब है, तो ये मरजुल मौत के दर्जे में है और मरजुल मौत के अंदर तो बीवी का हक इसके माल से मुतालिक हो जाता है, लिहाजा अगर इद्दत के अंदर इंतकाल हो जाता है तो बीवी वारिसा बनती है, लिहाजा यहां पर भी यह शख्स अगर इद्दत के अंदर मर गया तो बीवी वारिसा बनेगी। इसी तरह अगर एक शख्स लश्कर की सफों में मौजूद है, लश्कर के सफों में मौजूद है, लड़ाई की तैयारी हो रही है, तो इसके अंदर भी सलामती गालिब है क्योंकि उसके साथ पूरा लश्कर मौजूद है, वो अकेला तो नहीं है, तो ये सेहत के दर्जे में है, लिहाजा इसके अंदर अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तीन तलाकें देगा तो इद्दत के अंदर भी अगर ये मर जाए तो वह औरत वारिसा नहीं होगी भाई। और जबकि इसके मुकाबले में अगर एक शख्स है उसको किसास में कत्ल किया जाएगा, या वो शादीशुदा था उसने जिना किया है और वो साबित हो गया है और अब उसको रजम किया जाएगा, तो जब किसास के अंदर कत्ल करने के लिए एक आदमी को आगे कर दिया गया या रजम के अंदर एक शख्स को कत्ल करने के लिए आगे कर दिया गया, तो इस हालत में अगर ये शख्स अपनी बीवी को तीन तलाकें देगा इस हालत के अंदर तो हलाकत गालिब है, जब इसको अब किसास में कत्ल किया जाना है तो इसमें तो हलाकत गालिब है, इसका तो बचना मुश्किल है भाई, एहतमाल है शायद वो माफ कर दें लेकिन बहरहाल इसमें बचना मुश्किल है, तो ये मरजुल मौत के दर्जे में है, तो बीवी का हक इसके माल से मुतालिक हो चुका है, लिहाजा ये तीन तलाकें दे भी दे फिर भी अगर इद्दत के अंदर अगर ये मरता है तो बीवी वारिसा बनेगी। जाब्ता समझ में आ गया, जाब्ता क्या कि जिस चीज के अंदर हलाकत गालिब हो वह मरजुल मौत के हुक्म में है और जिस चीज के अंदर सलामती गालिब हो वह सेहत के हुक्म में है। काला इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं जामे सगीर के अंदर अमन कान महसूरन, और जो शख्स महसूर हुआ यानी किले में बंद किया गया है, उसको किले का घेराव किया है दुश्मनों ने, तो लोग किले वाले अंदर बंद हैं, तो कहते हैं अमन कान महसूरन, और जो शख्स जो है महसूर है औ फी सफिल किताली, या वो लड़ाई की सफ में है यानी लश्कर के अंदर है, फतल्लक मरअतहु सलासन, इसने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दी उस महसूर ने या ये जो किताल की सफ में है, तो लम तरिस हु, तो ये बीवी इसकी वारिसा नहीं बनेगी क्योंकि ये सेहत के हुक्म में है ये हालत भाई। वह इनकान कद बार हजारा जुलान, बार हजार यू बारिस के माने हैं तलवार से किसी से मुकाबला करना, वह इनकान कद बार हजारा जुलान, और अगर किसी शख्स ने दूसरे शख्स से तलवार के साथ मुकाबला किया, अवकुद दिमल युक तलाफी किसास इन और रजमीन, या उसको आगे किया गया ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए किसास में और रजमीन या रजम में यानी संगसारी में वारिसा, तो इस सूरत में ये बीवी इसकी वारिसा बनेगी अगर इद्दत के अंदर इसका इंतकाल हुआ, तो कहते हैं वारिसत बीवी इसकी वारिसा बनेगी, इन मा तफीजा लिकल वज ही औ कुतिला, अगर ये शख्स इसी वजह में यानी इसी सबब से मर गया औ कुतिला या उसको कत्ल कर दिया गया, चाहे इसी सबब से मरे चाहे कोई और उसको कत्ल कर दे, दोनों सूरतों का हुक्म एक ही है। जैसे एक शख्स मरजुल मौत में गिरफ्तार है और मरजुल मौत में बीवी का हक इसके माल के साथ वाबस्ता हो गया, इसने बीवी को तीन तलाकें दी, आपने क्या हुक्म लगा दिया कि इद्दत के गुजरने तक ये वारिसा बनेगी, और फिर चंद दिन गुजरे थे एक और आदमी आया उसने इसको तलवार से कत्ल कर दिया इस मरीज को, अब तो ये मर्ज की वजह से नहीं मरा उसके कत्ल की वजह से मरा है, लेकिन कहते हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसी सबब से मरे चाहे किसी और सबब से मरे, बहरहाल अगर हालत ऐसी है जिसमें हलाकत गालिब है तो वह मरजुल मौत वाला हुक्म है, चाहे उसी सबब से मरे चाहे किसी और सबब से मरे, और अगर हालत ऐसी है जिसमें सलामती गालिब है तो वो सेहत वाला हुक्म है भाई। ये इबारत भी देख लें औकुद दिमा लियुक तला फी किसासिन, ये जो फी आया है याद रखो उलमा फरमाते हैं कि कभी कभार फी भी इल्लत बयान करने के लिए आता है, फी भी किस लिए आता है, इल्लत बयान करने के लिए आता है, लियुक तला फी किसासिन लियुक्तला लिअजलि किसासिन, किसास की वजह से किसास के सबब से, तो फी भी सबब बयान करने के लिए आता है भाई। आगे देखिए कहते हैं वह असलुहू मा बैन्ना, और जाब्ता इसका वो है जो हमने बयान कर दिया कि अन्न इमरातल फारी तरी सुस्त हसानन, इमरातुल फार भाई याद रखो ये शख्स जो मरजुल मौत में गिरफ्तार है और ये अपनी बीवी को तलाक बाइन देता है, इसको कहते हैं जौजे फार या रजुले फार, फर्रा या फिर्रू, फर्रम व फिरारन फहुआ फारुन, फर्रा या फिरू का माना भागना, तो ये शख्स भी गोया भाग रहा है, ये भागना चाहता है, जान छुड़ाना चाहता है बीवी के वारिस होने से, ये भाग रहा है यानी बीवी को अपना वारिस नहीं बनाना चाहता। तो इसको क्या कहेंगे, रजुले फार भाई या जौजे फार, और इसकी बीवी जो है वो इमराए फार है या जौजे फार है। तो ये मसले जितने अभी तक जिक्र हो रहे हैं ये रजुले फार के मसले हैं या जौजे फार के हैं, या यूं कहो इमराए फार के मसले हैं, इमराए फार। तो कहते हैं वह असलहू मा बयनाज के जाब्ता इसका वो है जो हमने बयान कर दिया कि अन्न इमरात अल फारी तरिसु इस्तेहसानन, कि इमराए फार वो वारिसा बनेगी इस्तेहसानन भाई। तवज्जो है, याद रखो ये जो हमने इमराए फार को वारिस करार दिया है ये इस्तेहसानन है। कियास तो ये तकाजा करता है कि इस औरत को वारिसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तलाके बाइन से निकाह टूट जाता है जी। जैसे इमाम शाफी रहमला ने जिक्र फरमाया था कि जैसे खावंद इसका वारिस नहीं बनता तो ये बीवी को भी खावंद का वारिस नहीं बनना चाहिए इस हालत में। तो कियास ये तकाजा करता है लेकिन इस्तेहसानन ये इमराए फार वारिसा बनेगी भाई। तो कहते हैं वह असलहू मा बयन्ना, और अजाबता इसका वो है जो हमने बयान कर दिया कि अन्न इमरात अल फारी तरिस इस्तेहसानन, के इमराए फार जो है जान छुड़ाने वाले शख्स की बीवी जो है वो इस्तेहसानन वारिसा बनेगी। वह इन्नमा यस्बुतु हुक्मुल फिरारी बिताल्लुकि हक्किहा बिमालिही, भाई फिरार का हुक्म कब साबित होगा, फिरार का माना भागना, कब कहेंगे खावंद भागना चाहता है, ये उस वक्त कहेंगे जब बीवी का हक उसके माल के साथ मुतअल्लिक हो गया है, यानी खावन मरजुल मौत में गिरफ्तार है या ऐसी हालत में है जिसमें बचना मुश्किल है भाई, तब औरत का हक इसके माल से मुतअल्लिक हो गया है। अब ये तलाक देता है, मालूम हुआ ये रजुल फार है, ये जान छुड़ाना चाह रहा है। तो कहते हैं वही नमा यसबुतो हुक्मुल फिरारी, और फिरार का हुक्म साबित होता है बिताल्लुकि हक्किहा बिमालिही, उस औरत का हक उस खावंद के माल से मुतालिक होने की वजह से। वही नमा यताल्लकु बिमरज़िन युखाफु मिन्हुल हलाकु गालिबन, और बीवी का हक मुतालिक होता है खावंद के माल से बिमरज़िन ऐसे मरज की वजह से, युखाफु मिन्हुल हलाकु गालिबन जिससे गालिबन हलाक का खौफ हो, जिसमें हलाक का खौफ गालिब हो। कमा इदाका न साहिब अल फिराशी, जैसे कि वो साहिब फिराश हो, यानी बिस्तर पर लग गया है, अब आम सेहतमंद लोगों की तरह अपने काम काज नहीं कर सकता, तो मालूम हुआ ये क्या है, मरजुल मौत है भाई। तो कहते हैं कमा इदाका न साहिब अल फिराशी, जैसे कि वो उसका खावन जो है वो साहिबुल फिराश हो, यानी बीमार है बिस्तर पर लग गया है। वह अयकून अभी हाल ला यकूम भी हवा इजी ही, और वो ये कि खावन ऐसी हालत पर हो कि ला यकूम भी हवा इजी ही, कि वो अपनी हाजतें पूरी नहीं कर सकता। कमा याता दुहुल असिहा, जैसे कि आदत होती है तंदुरुस्त लोगों की, असिहा तंदुरुस्त लोग, याता दु जैसे आके आदत होती है। तो कहते हैं वह हुआ अयकून बिहालिन, और वो ये कि खावद ऐसी हालत पर हो, ला यकूमु बिहवा इजी ही कमायाता दुहुल असिहाउ, कि वो खावन अपनी हाजतें पूरी नहीं कर सकता, वो अपनी हाजतें सरंजाम नहीं दे सकता। कमायाता दुहुल असिहाउ, जैसे कि तंदुरुस्त लोगों की आदत होती है। वकद यसबुतु हुक्मुल फिरारी बीमा हुआ फी मानल मरसी, और इसी तरह कभी कभार फिरार का हुक्म साबित हो जाता है बीमा हुआ फी मानल मरसी, ऐसी चीज की वजह से भी जो मरस के माना में हो। फी तवज्जुहिल हलाकी गालिबन, भाई किस चीज में मरस की तरह हो, कहते हैं फी तवज्जुहिल हलाकिल गालिबी, गालिब हलाक के मुतवज्जे होने में, जैसे मरजुल मौत में हलाकत गालिब होती है, इसी तरह कोई ऐसी हालत आ गई कि उसमें भी हलाकत गालिब है, तो यह भी किसकी तरह हो गया, मरजुल मौत की तरह। तो यह माना है वकद यसबुतु हुक्मुल फिरारी, और कभी कभार फिरार का हुक्म साबित हो जाता है बिमा हुआ फी मानल मरज, उस चीज की वजह से भी जो मरज के माना में है। फी तवज्जुहिल हलाकिल गालिबी, गालिब हलाकत के मुतवज्जे होने में। वमा यकूनुल गालिबु मिनहु सलामता, और वो चीज जिसके अंदर सलामती गालिब हो, ला यसबुतु बिही हुक्मुल फिरारी, उससे फिरार का हुक्म साबित नहीं होता। फल महसूर वल्लदी फी सफिल किताली, बस वो शख्स जो महसूर है किले में बंद किया गया है, वल्लदी फी सफिल किताली और वो शख्स जो लड़ाई की सफ में है, अल गालिब मिनहु सलामतु, गालिब इनमें इससे सलामती है। लिअन्न अल हिस्न लिदफ़ बअसिल अदुवी, हिस्न कहते हैं किले को, स्वाद के साथ है हिस्न, लिअन्न अल हिस्न इसलिए क्योंकि किला जो है, लिदफ़ बअसिल अदुवी, बअसुन कहते हैं सख्ती और शिद्दत को, लिअन्न अल हिस्न लिदफ़ बअसिल अदुवी इसलिए क्योंकि किला जो है वो दुश्मन की सख्ती को दूर करने के लिए होता है, तो किला मौजूद है लिहाजा सलामती गालिब है। वकदल मनातु, मना लश्कर को कहते हैं, और इसी तरह लश्कर भी है, जो शख्स लड़ाई की सफ में है उसमें भी सलामती गालिब है क्योंकि पूरा लश्कर मौजूद है। फलायस बुतुबी हुक्मुल फिरारी, तो इस हसर या सफ के अंदर होने से फिरार का हुक्म साबित नहीं होता। वल्लदी बारजा औकुद्दिमल युक्तला, और वो शख्स जो तलवार से मुकाबला करता है, औकुद्दिमल युक्तला या जिसको आगे किया गया है ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए, अल गालिबु मिनहुल हलाकु, उसकी वजह से गालिब जो है वो हलाकत ही है। फतहक्कका बिहिल फिरारु, तो इसकी वजह से फिरार मुतहक्किक हो जाएगा। इस हालत में जब हलाकत गालिब है, ये बीवी को तलाक दे रहा है, मालूम हुआ ये उसको नुकसान देना चाहता है, अपना वारिस नहीं बनाना चाहता, तो इस सूरत में भी ये तलाक देगा तो फिरार साबित हो जाएगा, यानी ऐसी सूरत जिसमें हलाकत गालिब है। तो कहते हैं फतहक्कका बिहिल फिरारु, तो इसकी वजह से फिरार साबित हो जाएगा। वलिहादा अखवातुन तुखर्रजु अला हादल हर्फी, और इस मसले की और भी नजीरें हैं। वलिहादा अखवातुन, इस मसले की और भी नजीरें हैं, यानी इस जैसे और भी मसाइल हैं। तो खर्रजु अला हादल हर्फी, जिनकी तखरीज की गई है इसी तरीके पर, अला हादल हर्फी इसी तरीके पर उनकी भी तखरीज की गई है। मसलन देखो, कहते हैं एक शख्स किश्ती में सवार है, तो किश्ती के अंदर तो सलामती गालिब होती है, तो लिहाजा ये सलामती की हालत है। इस हाल में ये तीन तलाकें बीवी को देगा और इद्दत के अंदर भी अब इसका इंतकाल हो जाए, फिर भी बीवी वारिसा नहीं बनेगी। लेकिन अगर तूफान आ गया भाई, समुंदर में अगर तूफान आ गया, अब ये मरजुल मौत वाली हालत आ गई क्योंकि इसके अंदर हलाकत गालिब है। इसी तरह एक औरत है, वो हामिला है, हामिला है, तो ये हामिला तो ये तो सेहत वाली हालत है, लेकिन अगर उसको दर्द जह शुरू हो गया, वलादत का दर्द शुरू हो गया, तो ये भी किसके हुक्म में है, ये भी मरजुल मौत के हुक्म में है। बात समझ में आ गई। इसी तरह एक माजूर या अपाहज है, वो अगर अपनी हालत पर बरकरार है, यानी जिस तरह वो माजूर या अपाहज है उसी तरह जिंदगी गुजर रही है, तो ये सेहत वाली हालत है। लेकिन अगर इसकी बीमारी बढ़ना शुरू हो गई, तो ये मरजुल मौत की हालत है, क्योंकि पहले ही माजूर और अपाहज है, अब बीमारी बढ़ती चली जा रही है, मालूम हुआ अब इसमें बचना मुश्किल है भाई। तो कहते हैं वलिहादा अखवातुन तुखर्रजु अला हादल हर्फी, और इस मसले की और भी नजीरें हैं जिनकी तखरीज की जाती है इसी तरीके पर। वकौलुहू, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का ये जो कौल आया था मतन में कि इजा मा तमिनसाली कलवजी औ कुतिला, भाई मतन में क्या आया था, व इनका नकद बारजा रजुलन औ कुद्दिमल युक्तला फी किसासिन औ रजमिन वरिसत इन मातफी जालिकल वजह ही अवकुतिला, यानी इसी सबब से वो मरा या किसी और ने इसको कत्ल कर दिया गया, दोनों का हुक्म एक ही है। एक शख्स मरजुल मौत में गिरफ्तार है, तो चाहे इस बीमारी से मरे चाहे कोई इस बीमारी में कत्ल कर दे, दोनों का हुक्म एक ही है। वो अब बयान कर रहे हैं, कहते हैं वकौलुहु, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का ये जो कौल था, इजा माता फीदा लिकल वजी औ कुतिला, कि इसी सबब में उसको, इसी सबब की वजह से वो मर गया। देखो यहां पर भी फी जो आयान है, फी तालील की इल्लत के लिए है, इजा माता फी जालिकल वजी आई भी सबब जालिकल वजी, तो कहते हैं इदा माता फी दालिकल वजही, के जब वो शख्स मर गया फी दालिकल वजही उसी सबब की वजह से, औ कुतिला या उसको कत्ल कर दिया गया। دلیل ان یہ دلیل ہے علی انہ لا فرق بینما اذا مات بذالک سببی او بسبب آخرا کہ کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب وہ شخص اسی سبب سے مرے او بسبب آخرا یا کسی دوسرے سبب سے مرے کصاحب الفراش بسبب المرض اذا قتل جیسے صاحب فراش جو ہے بستر پر جو شخص لگا ہوا ہے بسبب المرض مرض کی سبب سے اذا قتل جب اس کو قتل کر دیا جائے تو دیکھو اب وہ مرض سے تو نہیں مرا دوسرے سبب سے مرا ہے لیکن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی جب ایسی حالت ہو جس کے اندر ہلاکت غالب ہے چاہے پھر وہ اسی سبب سے مرے چاہے کسی اور سبب سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی چلیے بس بھائی بات سمجھ میں آ گئی چلیے بس بھائی ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام